चलो आज के इस पार्लियामेंट्री सेशन में, एक्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र है। ऐसे मौसम में बाहर बारिश है, तूफान है, फिर भी आप 100% अपना प्रेजेंस भी दे रहे, इन्वॉल्वमेंट भी रख रहे। आप लोगों ने वेलनेस कैफे किया, एंजॉय किया वेलनेस कैफे में? किस किस ने एंजॉय किया? चलो थैंक यू। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से वहां कुछ वर्कआउट भी किया है, चार्ट्स भी बनाए हैं। हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी वो सारे चार्ट्स को देखेंगे और उसके बाद में उनको यहां डिस्प्ले भी किया जाएगा। तो आइए आज हम इस स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री सेशन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहते हैं। वैसे तो कल और आपके फैसिलिटेटर्स है, उन्होंने काफी क्लियर कर दिया होगा। तो ये वाला जो सेशन है डिबेट सेशन होगा, आपस में हम डिबेट करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जैसे आज्ञा करेंगे उस आधार से आपके ग्रुप्स को इनवाइट किया जाएगा, फिर उसके आधार से डिबेट होगी। और जब डिबेट करेंगे तो हमारी जो जूरी पैनल्स है वो आप सबको ग्रेडिंग करेंगे। तो पुनः एक बार किस आधार से पॉइंट्स मिलेंगे आपके समक्ष रख रहा हूं। पंक्चुअलिटी, हम समय पर शुरू करें, समय पर पूरा करें। जैसे आपका नाम अनाउंस होगा, आपके ग्रुप का नाम अनाउंस होगा, उसी समय आपका टाइम काउंट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट ग्रुप तैयार रहे पहले ग्रुप पूरा होने से पहले, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। आप अपने अपने ग्रुप में या जब दूसरे पार्टिसिपेशन दूसरा ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है उस समय आप कितना डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं वो हमारे जूरी ऑब्जर्व करेंगे, पब्लिक को भी, ऑडियंस को भी ऑब्जर्व करेंगे, स्टेज वाले बोलने वालों को भी ऑब्जर्व करेंगे। तो उस आधार से उस पर पॉइंट्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशंस, आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका हाव भाव कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका टोन कैसा है, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, टॉपिक कैसा है, या टॉपिक रिलेटेड आप बोल रहे हैं या आउट ऑफ द टॉपिक बोल रहे हैं, उसके आधार से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर टीम वर्क, आपने दिन भर आज पूरे टीम ने मिलकर बहुत काम किया हुआ है, तो वो काम आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में, तो उसके आधार से भी आपको ग्रेडिंग मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है टीम स्पिरिट। हम अपने ग्रुप के लिए, स्वयं के लिए, अपोजिट ग्रुप के लिए या अन्य ग्रुप्स जो है उनके प्रति भी कितनी सपोर्टिंग भावना रखते हैं उसके आधार से पॉइंट्स मिलेंगे। 25 बोनस पॉइंट मिलेंगे जो आपका ओवरऑल बिहेवियर आज के दिन भर में हमारे जजेस ने जो नोटिस किया है उसके आधार से आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय आपका यहां का प्रेजेंटेशन देखकर, आपका इन्वॉल्वमेंट देख के उनके हाथ में भी 25 बोनस पॉइंट है, उसके आधार से अध्यक्ष महोदय भी उस ग्रुप को पॉइंट देंगे। बाकी रूल्स वगैरह आप सबने क्लियर पढ़ लिए होंगे, आपके फैसिलिटेटर्स ने आपको बता दिए होंगे, उसमें कुछ किसी को क्वेरी है? सब क्लियर है रूल्स में किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन कौन सी बातों को अटेंशन रखना है? बस तीन चार जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूं। स्पेसिफिक, जैसे जिस टॉपिक पे बोलना है उसी टॉपिक पे स्पेसिफिक आप कितना कहते हैं ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा, अनकंट्रोवर्शियल, कोई ऐसी बात इस स्टेज पे, क्योंकि आपको पता है ये स्टेज स्पिरिचुअल स्टेज है, तो इसमें कोई ऐसी बात जिस पे कोई न्यायालय का आदेश का बाकी है, डिसीजन होना बाकी है या कुछ कॉन्ट्रोवर्सी है वो ना करे तो बेहतर है। हाँ, आप जो करंट पॉइंट्स है जरूर उठा सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है, करंट पॉइंट्स आप उठा सकते हैं, करंट इश्यूज या करंट घटनाएं भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर फ्री ऑफ वही है कि किसी न्यायालय के इसमें नहीं हो, और आपके मन में अगर कुछ क्वेरी आती है, प्रश्न आते हैं, तो आप चिट्ठी पर लिख के आपके जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स है उनके थ्रू अध्यक्ष जी के पास पहुंचाएंगे, तो अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे कि आपको उस क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है, या करना है तो कब करना है। ठीक है, एक नया चीज है कि इसमें अध्यक्ष जी के पास पावर है, वो जीरो आवर अनाउंस करेंगे। उस जीरो आवर में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आउट ऑफ द टॉपिक भी हो, तो आप हाथ रेस करके उसे बता सकते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो उसके बाद में हमारे जो गेस्ट है या हमारे की नोट स्पीकर है वो उसके लिए आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो हम विधिवत इस पार्लियामेंट की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले हमारे आज के इस संसद सत्र के अध्यक्ष हमारे आदरणीय अरुण भाई जी, इन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। प्लीज खड़े होके हम हमारे अध्यक्ष महोदय का अभिवादन करेंगे। हमारे आज के सत्र में विशेष अतिथि है डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, जो दिल्ली से है, न्यूरो फिजिशियन है, उन्हें भी मैं विशेष आमंत्रित करता हूं, आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और कीनोट स्पीकर के रूप में आज का टॉपिक आपके समक्ष रखने के लिए विशेष आमंत्रित है हमारे आदरणीय रामकृष्ण भाई जी। तो रामकृष्ण भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इस संसद सत्र की शुरुआत 3 मिनट उस परम पिता की याद में करते हैं जो हमारे सबका अध्यक्ष है, सभापति है, चेयरपर्सन है, जो हमारी लाइफ को चेयर कर रहे हैं, इस परम पिता की याद में 3 मिनट। हमारी आज की सभा की शुरुआत में मैं हमारी बहनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे अतिथि इनका बैज और फूल देकर स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय अरुण भाई जी, जो हमें आज अध्यक्ष के रूप में उनका लाभ मिल रहा है, अरुण भाई जी का परिचय आपने सवेरे थोड़ा सुना होगा, लेकिन विशेष रूप से मेंशन करना चाहता हूँ कि साकार ब्रह्मा बाबा जब इस संस्था की यज्ञ की स्थापना कर रहे थे, उस समय हमारे आदरणीय अरुण भाई जी भी के साथ थे। तो तब से युवा काल से स्वयं का जीवन भी इस तरह से बनाया जो सब फॉलो करे, और अपने जीवन के साथ साथ कई युवाओं का जीवन बनाने के निमित्त बने हमारे आदरणीय अरुण भाई जी। डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, ये इस युवावस्था में भी बहुत कुछ अचीव किया है। अभी वर्तमान में दिल्ली के हॉस्पिटल में है, जीबी पंत हॉस्पिटल में एज एचओडी सेवाएं दे रहे हैं, और अभी ग्लोबल हॉस्पिटल ब्रह्मा कुमारी का ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहां अभी कुछ सेवा देने के लिए आए हैं और उनका लाभ हमें आज मिल रहा है। हमारे रामकृष्ण भाई जी, जो आप सवेरे उनसे परिचित हुए कि कितनी प्रगाढ़ ज्ञान के धनी है हमारे रामकृष्ण भाई, जो काउंसलिंग भी करते हैं और युवाओं को प्रेरणा भी देते हैं। तो ऐसे हमारा आज का पैनल, साथ में आप सबके समक्ष जूरी पैनल भी है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड जूरी थोड़ा सा खड़े होकर सभा का आपका साक्षात्कार कराएंगे। ये हमारे युवा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्य है जो आपके प्रेजेंटेशन का ग्रेडिंग भी करेंगे और आपको सहयोग भी करेंगे। थैंक यू। आप सबके साथ हर ग्रुप में दो दो कोऑर्डिनेटर्स आपको मिले हुए, मैं हमारे जो फैसिलिटेटर कोऑर्डिनेटर्स है उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि एक बार अपने ग्रुप के बोर्ड के साथ एक बार खड़े हो जाएंगे और सबको अपना साक्षात्कार कराएंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये सब हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, इन्होंने काफी सालों से युवाओं के साथ काफी सेवाएं की है, युवा मन को जानते हैं, युवाओं के बीच में रह के कैसी सेवा की जाती है उसे पहचानते हैं, और अपना अनुभव का लाभ आप सबको मिल ही रहा होगा, आपने आज नोटिस किया ही होगा वर्कशॉप में। आगे भी आप उनसे जितना चाहे अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ ही है। जब तक आप कॉन्फ्रेंस में रहेंगे तो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ ही है। तो आज का जो टॉपिक है, तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है, अगर आपकी अनुमति हो तो हमें टॉपिक के लिए इनवाइट करें। आज टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए कीनोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच में रामकृष्ण भाई जी हैं। रामकृष्ण भाई जी के पास अथाह अनुभव है, और खास करके वेल बीइंग के क्षेत्र में तो काफी अनुभव उन्होंने अर्जित किया है। कई युवाओं का, कई व्यक्तियों का जीवन अपने सलाह से, अपने ओपिनियन से, अपने सुझावों से उन्होंने परिवर्तन किया है। उन्होंने अपने लाइफ में भी इस तरह से वेल बीइंग फॉलो किया है कि बहुत सारी डिफिकल्ट परिस्थिति भी आ गई, लेकिन उसमें से उन्होंने ना केवल बाहर निकले, लेकिन बाहर निकल के और भी प्रबल और शक्तिशाली बन के आज हमारे समक्ष है। तो मैं हमारे आदरणीय रामकृष्ण भाई जी को अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर हमें प्रकाश डालिए। आदरणीय रामकृष्ण भाई जी।
ओम शांति। धन्यवाद जितेंद्र भाई। आज की सभा का अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, और आज की सभा में उपस्थित विशिष्ट अतिथि और जूरी मेंबर्स और देश के कोने कोने से पधारे हुए इस स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स को वेलकम करते हुए, आज का इस टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। देश के कोने कोने में देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स देश के लिए एक दिशा निर्देशन करते हैं। जब वो सारे एक जगह एकत्रित होते हैं और देश की कई प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसी प्रकार से आप सब पधारे हो देश के कोने कोने से यहां पर स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट में वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और वेलबींग के बारे में डिस्कस करने के उपलक्ष्य से। वेलबींग सिर्फ एक व्यक्ति की स्वास्थ्य के बारे में नहीं कहता है, यह चीज कई सूक्ष्म एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है। देश का जो ताकत है वो देशवासियों की लाइफस्टाइल के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर भी निर्धारित होती है। एक देश एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। जब कलेक्टिव स्ट्रेंथ की बात आ जाती है, कभी कभी एक जगह जहां सुराग हो जाता है तो सारा फ्लो हो जाता है। अगर एक जगह बहुत स्ट्रांग हो जाता है या कोई एक व्यक्ति बहुत स्ट्रांग इंटेंशन से, पावरफुल इंटेंशन से डेडिकेट हो जाता है एक पर्पस की ओर, सारे देश में सोच को पैदा कर देता है। आज हम देखते हैं भारत देश में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। फिजिकल हेल्थ की ओर, फिजिकल वेलबींग की ओर हम देखते हैं तो कई डायबिटीज का ग्लोबल कैपिटल हो चुका है, हार्ट डिजीजेस का ग्लोबल कैपिटल हो चुका है, कैंसर बहुत सीवियरली स्प्रेड हो रहा है। क्या हम कुछ कर सकते हैं इस विषय पे? अगर हम सोशल वेलबींग के बारे में सोचते हैं तो सनातन संस्कृति 5000 वर्ष की ये भारत आज के दिन में कई प्रकार की सोशल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, कई प्रकार की सोशल प्रॉब्लम्स। क्या हम इसमें कुछ चेंजेस ले आ सकते हैं? ठीक है, और एक एरिया हम देखते हैं तो मन दृढ़ है तो तन दृढ़ है, तो तन दृढ़ है तो समाज दृढ़ है, समाज दृढ़ है तो देश दृढ़ है। अगर मन ही कमजोर है, प्रोफेशनली बहुत एक्सेल कर रहे हैं यूथ, मगर इंटरनली अगर देखा जाए तो मन बहुत विचलित है, अशांत है, मन बहुत डिस्टर्ब है। हाईएस्ट लेवल स्पीक्स को अचीव करने वाले यूथ भी आज के दिन हम जब देखते हैं तो मेंटली इतना वीक हो जाते हैं तो जीवन जीने का कोई मोटिवेशन ही नहीं रह जाती। फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे अचीवमेंट्स है फिजिकली, फिजिकल फिटनेस, जिम्स, एक्सरसाइजेस, बॉडी बिल्डिंग, हर जगह पे बहुत स्ट्रेंथ है। मन अगर कमजोर होए तो क्या हालत हो जाता है? क्या उसके ऊपर हम कुछ कवर कर सकते हैं? यह सिर्फ फिजिकल वेलबींग ही नहीं, मेंटल वेलबींग भी है, सोशल वेलबींग भी है। और ऐसे कौन से चीज है जहां वेलबींग की महत्व है? क्या हम सब उन सभी एरियाज में वर्क करें? भारत में एक ऐसा विषय था जब लोगों के रिश्ते बनते थे तो कहा जाता था कि ये सिर्फ एक जन्म का रिश्ता नहीं है, 7 जन्मों का रिश्ता हो जाता था। आज के दिन सुबह की सभा में भी उस बात की ओर डिस्कस किया गया। रिलेशनशिप हैज बिकम वेरी वेरी वल्नरेबल। रिलेशनशिप वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां पे एबंडेंस ऑफ गिविंग होता है, मगर आज के दिन पे रिलेशनशिप एक ऐसा स्टेज है कंज्यूमिंग माइंडसेट के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रेकअप, मेकअप, ओके, री रिलेशनशिप, इस सब की जो मिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द माइंड रेडी फॉर एनी रिलेशनशिप? हाँ, जब रिलेशनशिप्स की बात आ जाती है, सिर्फ जीवनसाथी.com की रिलेशनशिप नहीं है, कई प्रकार के रिलेशनशिप्स है, पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप्स है, सिबलिंग के साथ भी रिलेशनशिप्स है, फैमिली कई प्रकार के सैक्रिफाइसेस के साथ यूथ को खड़ा करती है, तो उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो रिलेशनशिप्स में भी। मैं भी पिताजी बहुत सालों साल मेहनत करके सोच रहे हैं कि ये बच्चा स्टेबलाइज हो जाएगा तो मैं रिटायर होने के लिए प्रयास करूं, बाकी के बच्चों का फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये निभाते हैं। क्या उस रिलेशनशिप्स में भी हमारा वेलबींग है? एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस वेलबींग की ओर क्या है, और इस वेलबींग को अचीव करने के लिए देश में, सारे देश में इस वेलबींग को अचीव करने के लिए यूथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कैन वी ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक होता है चाइल्डहुड डेज, इन्फेंसी, टोटल डिपेंडेंस, चाइल्डहुड लर्निंग स्टेज, एडोलेसेंस, दैट इज अ स्टेज वेयर योर ओपिनियंस आर फॉर्मिंग, आप सीख भी रहे हो, इंडिविजुअलिटी भी डेवलप होता है, एडल्टहुड इज अ स्टेट व्हेन यू आर इन अ स्टेट वेयर यू कैन गिव, आप देने की क्षमता में पहुंच जाते हो व्हेन यू बिकम द एडल्ट, यूथ इज दैट स्टेट। एंड नाउ ये फिजिकल ग्रोथ होने के बाद भी मेंटली चाइल्डहुड स्टेट में है, क्या इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन, इंडिपेंडेंस नॉट ओनली इन थिंकिंग एंड टेकिंग डिसीजंस बट इंडिपेंडेंस इन मेंटेनिंग योर ओन सेल्फ, इंडिपेंडेंस इन योर मेंटल वेलबींग, इंडिपेंडेंस योर फिजिकल डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंस इन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, हर चीज में वो इंडिपेंडेंस आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किस तरह से लें? खुद का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल वेलबींगनेस की, अपने मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखे, अपने मन के विचारों को अच्छी तरह से समझ सके, उसकी वेलबींग की ओर हम कैसे काम करें, कितना काम करें, और फिजिकल वेलबींग, हेल्थ को अच्छी तरह से रखे, एक लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से रखे, इतना अच्छी तरह से कि आगे वाले आने वाले जनरेशंस के लिए बहुत हेल्दी जनरेशंस हम दें, आने वाले चिल्ड्रन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, या टोटल जनरेशन के लिए बहुत हेल्दी जनरेशन दे, उसके लिए हम अपनी और किस प्रकार से काम करें? एक ओनरशिप ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आज की, मैं कहूं ये आज का ये मानसून देखते हैं तो मानसून सेशन ही लग रहा है पार्लियामेंट का, तो इस मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जहां परमात्मा भी बरस रहे हैं, बल प्रकृति गरज रही है, परमात्मा प्यार से बरस रहे हैं, हम सब सोचे इस विषय पर और ओवरऑल वेलबींग, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे साथ सारा देश जुड़ा हुआ है, मेरा एक छोटा सा परिवर्तन सिर्फ मेरे तक सीमित होने वाला नहीं है, ये परिवर्तन सारे देश में स्प्रेड होने वाला है। आज की इस सभा का, पार्लियामेंट का ये सेशन में जो भी डिलिब्रेशंस होंगे, ये डिबेट्स भी होंगे, ये डिलिब्रेशंस एंड डिबेट्स कोई विन करने के लिए नहीं है, कई बार आपको डिफर करना होगा, कई बार आपको एक्नॉलेज करना होगा, जो बहुत अच्छी पॉइंट है, आपको कहना होगा कि दिस इज एब्सोल्यूटली राइट, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अडैप्ट इनटू माय लाइफ, इस प्रकार की कन्विक्शन के साथ अच्छे डिलिब्रेशंस हो, एक अच्छा रेजोल्यूशन निकले, और वो रेजोल्यूशन की को फॉलो करने का जो ओनरशिप है वो खुद से निकले, और इतनी शक्तिशाली वो हो, संकल्प हो कि ये परिवर्तन एक कैटलिस्टिक चेंज के रूप में शुरू हो और सारे देश में व्याप्त हो जाए। यही शुभकामनाओं के साथ, यही एक्सपेक्टेशंस के साथ, यही दृढ़ संकल्प के साथ मुझे आत्म प्रकाश भाई, हमारे यूथ विंग के जो मधुबन कोऑर्डिनेटर है, उनकी एक कोट मुझे याद आ जाती है इस वक्त में। वो अक्सर कहते हैं जो हवाओं से टकराता है उसे तूफान कहा जाता है, और जो तूफानों से टकराता है उसे युवा कहा जाता है। और ये हुआ आज की ये तूफानों को टकराते हुए इसमें से एक अच्छे सॉल्यूशन ले आए, एक परिष्कार देश के लिए। आज की ये डिलिब्रेशंस, इस पार्लियामेंट की डिलिब्रेशंस अच्छी तरह से सारे देश तक व्याप्त हो और एक अच्छा कैटलिस्टिक चेंज को इनिशिएट करे, ये शुभ संकल्प से मैं विराम लेता हूं। अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, और जीतू भाई को भी धन्यवाद कहते हुए मैं विराम लेता हूं। नमस्कार।
थैंक यू रामकृष्ण भाई, आपने शॉर्ट में लेकिन बहुत व्यवस्थित रीति से हमें बता दिया कि वेलबींग क्या होती है। तो आज हम अभी विधिवत रूप से इसके ऊपर डिबेट शुरू करेंगे, क्योंकि संसद का अर्थ ही होता है
युवाओं का, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। तो आप सबसे हम सुनना चाहते हैं, तो आज अभी आप सबको चांस मिलेगा, लेकिन उसके पहले एक बात जस्ट भाई जी ने जो कही उसके साथ में मुझे याद आया कि आजकल रिलेशनशिप का बहुत क्रेज चल रहा है। तो जैसे न्यूज देख रहे थे तो उसमें देख रहे थे रोज 3 में से 2 ब्रेकअप होते हैं, 1 पैचअप होता है। तो इसी आधार से रिलेशनशिप चलती है, बिगड़ती है, बनती है। तो सबसे पहले डिबेट के लिए भी वेल बींग इन एंड रिलेशनशिप उस ग्रुप को इन्वाइट करते हैं। इस टॉपिक पे जो 2 ग्रुप ने वर्कआउट किया है वेल बींग इन रिलेशनशिप, तो जो इसे एग्री करते हैं कि ये होना चाहिए वो इस पोडियम पे आएंगे, और जिन्हें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजेस है, वो उस पोडियम पे उनके प्रतिनिधि आएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसके बाद में फिजिकल वेलबींग वाले तैयार रहे, तो वेलबींग इन रिलेशनशिप वाले सामने आ जाए जिन्हें स्पोक्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्लीज अपने शूज स्टेज के नीचे निकाल के ऊपर आएंगे, क्योंकि ऊपर व्हाइट है ना, ऊपर तो खुद ही बताएंगे। आप अपने ग्रुप का इंट्रोडक्शन देकर फिर शुरू करेंगे। इस ग्रुप के अगर अलग कोई सदस्य और दूसरे साथ में है तो स्टेज के नीचे खड़े रहेंगे या बीचों बीच आ जाइए, बीच में। वेलबींग फेवर वाला ग्रुप, चैलेंजेस वाला, रिलेशनशिप फेवर वाला ग्रुप। स्टेज पे केवल 2 ही लोग रहेंगे, ठीक, बाकी आप स्टेज के नीचे खड़े हो सकते हैं। आपके ग्रुप के कोई सदस्य उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो नीचे। जो रिलेशनशिप को फेवर कर रहे हैं वो इसमें आ जाए, चैलेंज के अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले पहले चैलेंज वाले शुरू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन देकर, फिर ग्रुप का शुरू करेंगे। अभी टाइम स्टार्ट कर दीजिए, टाइम स्टार्ट ना।
नमस्कार सम्मानीय मंच और मेरे प्यारे भाई बहनों, टुडे आई महिमा अलोंग विद ब्रदर मनीष आई एम रिप्रेजेंटिंग आवर ग्रुप ब्लूमिंग माइंड्स। खिलखिलाते मन से जग जीते हम। मैं मंच पर उपस्थित असीम आदरणीय स्पीकर महोदय जी से, अध्यक्ष जी से अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूँ।
ओम शांति। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि आजकल जो सबसे ज्यादा युवा में प्रॉब्लम चल रही है अफेयर, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, तो ये काफी हद तक इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसका हमारे सामाजिक और मानसिक और हमारे यहाँ तक कि एजुकेशन करियर पे भी काफ़ी नुकसान होता है। और इसमें सालों साल व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और प्लस उसका जो प्रेजेंट में जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आ जाता है उसका।
यूथ रेडी ही नहीं होता, यूथ में वो कैपेसिटी ही नहीं बची कि वो उस लव को, उस लेवल के लव को एक्सेप्ट कर पाए। लाइक नाउअर डेज व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग, लाइक व्हेन वी आर, हम जब इतना ज्यादा लव हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग एक्सेस ऑफ लव, देन सामने से पर्सन इज सेइंग नहीं यार इतना नहीं हो रहा, प्लीज अब हो गया, बस बहुत हो गया। सो इस टाइप की बहुत ज्यादा फेस करने को हमें मिलती है सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में।
और दूसरा सबसे ज्यादा युवा में जो डिप्रेशन वाला कारण बनता है वो ज्यादातर उनका जो है रिलेशनशिप में ब्रेकअप के कारण से होता है, जिसके कारण से उनके परिवार वालों को भी काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है और काफी जो है मानसिक तनाव झेलना पड़ता है।
रिलेशनशिप सिर्फ बॉयज और गर्ल्स तक लिमिटेड नहीं है, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद ब्रदर्स, इन सबसे वो भी अफेक्ट होता है। लाइक एक ब्रेकअप हुआ उसके बाद ठीक है द पर्सन इज डिप्रेस्ड, घर वालों से बात नहीं करा, घर वाले अलग परेशान हो रहे हैं कि हमारा बच्चा बात क्यों नहीं कर रहा, उसे रिलेशनशिप विद पेरेंट्स अफेक्ट हो रहा है, ब्रदर सिस्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। इस ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, दे शो एक्सेस ऑफ लव कि हाँ ठीक है हम इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है इमोशनल सपोर्ट देने के चक्कर में बहुत बारी पेरेंट्स को ये सुनने को मिलता है कि आपने तो अपना बच्चा बिगाड़ दिया. सो हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ.
दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो होती है आजकल जो युवाओं में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उसका भी मुख्य कारण जो है रिलेशनशिप में ब्रेकअप का होता है. और दूसरा ये बहुत ही ज्यादा समस्या बढ़ रही है हमारे भारत देश में और इसका बहुत ही अच्छी तरीके से समाधान सबको ढूंढना चाहिए.
ये प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड रह के नहीं रह गई है. लाइक मैं एक एग्जांपल लूं कि कैसे हमें लव और लॉ मेंटेन करना चाहिए, तो उसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. तीन फ्रेंड्स थे, ड्राइविंग कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली दे मेट विद एन एक्सीडेंट. तो एक फ्रेंड को ज्यादा चोट लग गई, दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल, रिकवरी हुई, डॉक्टर्स ने बोला फिजियोथेरेपी की जरूरत है. बट फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, उस पेशेंट को बहुत पेन हो रहा था, बहुत ही ज्यादा. ही वॉज क्राइंग कि मेरे से और नहीं होगा. डॉक्टर्स वर सेइंग नहीं, करनी तो पड़ेगी, वापस से पैरों पे चलना है ना. एक फ्रेंड वॉज सेइंग नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता, आई लव हिम वेरी मच, आई टेक हिम टू अनदर हॉस्पिटल, कुछ भी करेंगे हम इसे पेन में नहीं देखेंगे. द अदर फ्रेंड वॉज नहीं, हेयर आई हैव टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम हिम. और अब यहाँ पे मेरे को एज अ फ्रेंड नहीं, एज अ पर्सन इसे देखना है कि इसे रिकवर करना है. सो इस टाइम पे लव की जगह लव के साथ साथ डिटैचमेंट का भी रोल इक्वली प्ले होता है. सो ही डिटैच्ड हिमसेल्फ एंड उसके बाद वो बच्चे ने रिकवर भी करा एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन हिज फुट अगेन.
नमस्ते, सत श्री अकाल एंड ओम शांति टू ऑल माय डिग्निटी एंड रिस्पेक्टेड मेंबर्स प्रेजेंट हियर एंड मेरे युवा जनों. आई एम डॉक्टर वेदांश पांडे
और मैं राखी बोरकर.
वी आर फ्रॉम द ग्रुप पीस मेकर. ओके, सो बेसिकली मैं परमिशन लेना चाहूंगा हमारे माननीय अध्यक्षों से कि हम हमारा जो विषय है आज का वेल बीइंग इन अ रिलेशनशिप वो स्टार्ट करने से आपकी अनुमति चाहेंगे. सो बेसिकली वेल बीइंग इन अ रिलेशनशिप संबंध जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो हमारे माँ बाप के साथ भी होता है. जैसे हमारे माननीय रामकृष्ण सर ने बताया कि रिलेशनशिप हर एक के साथ होता है. ओके, अगर हम माँ बाप के साथ हैं तो एक प्यार संबंध है, हम फ्रेंड्स के साथ हैं वो भी प्यार संबंध है, ठीक है. सो जैसे कि अगर आज की दुनिया में संबंध सब बदलते जा रहे हैं, पहले के संबंध जो होते थे उनमें रिस्पेक्ट हुई जाती थी, ओके, प्यार ज्यादा होता था, बट आज ये सब काफी कुछ बदल चुका है. बट हम आज की जनरेशन को सॉल्यूशन देना चाहेंगे कि वो अपने संबंध और कैसे ठीक कर सकें, ठीक है. जैसे कि आज के पेरेंट्स और बच्चों में नहीं बनती, बट अगर पेरेंट्स टाइम देना चालू करें अपने बच्चों के साथ तो ये रिलेशंस और सही हो सकते हैं.
बट आज की महंगाई को देखते हुए हम ये भी नोटिस करते हैं फीस एक्सपेंसेस, ऊपर से जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों की डिमांड्स भी बहुत सारी बढ़ चुकी है. सिंगल पेरेंट की अर्निंग से सारी सारी डिमांड सारी नीड्स पूरी नहीं हो पाती. एट द एंड ऑफ द डे दोनों पेरेंट्स को वर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मदर आती है, आके खाना बनाती है, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट तो बेचारी करेगी ना, शाम को अपना ऑफिस का काम भी करेगी, रात को भी प्रिपेयर करेगी.
डैड रात को लेट घर पे,
लेकिन इतनी तो मैच्योरिटी होती है कि वो हम अवेयर कर सकते हैं हर चीज के लिए.
हेयर कम्स
वो टाइम मैनेजमेंट एक मस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, टाइम मैनेजमेंट मस्ट इम्पोर्टेंट एंड आगे वाले को सुनना इम्पोर्टेंट है ना, तब तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा ना. ये रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंट है कि हम आगे वाले को सुने, देन हम उसका ये करें कि हाँ आगे बढ़ सकते हैं.
लेकिन जब बच्चे ही ज्यादातर समय अपने फ्रेंड्स में यूट्यूब व्हाट्सएप उस पर लगे रहेंगे, अपने जो यंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसके अट्रैक्शन में लगे रहेंगे, तो उसमें माँ बाप क्या करेंगे.
जाकेक्षी मैं आपकी अनुमति चाहूंगा अपने कुछ विचार व्यक्त करने के लिए. बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे उसका पालन पोषण उसके संस्कार सब माँ बाप देते हैं.
माँ बाप कर,
ठीक है. अगर वो टाइम देते रहे तो बच्चे फ्रेंड्स के पास क्यों जाएंगे.
नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, फ्रेंड्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप जब आप 24 घंटे घर में तो रहोगे नहीं. आप जाओगे बचपन से, आप जब थोड़े बड़े होते हो स्कूल में जाएंगे तो वहाँ फ्रेंड सर्किल टीचर सर्किल सब मिलेगा. लेकिन हम आपसे एक बात ये पूछना चाहते हैं कि जब आप अपने कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में इतनी कम उम्र रिलेशन बनाने की जरूरत क्या है. जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिलेशन है, आज जिस बच्चे से पूछो वो एक ही बात बोलता है, आज मेरी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, उसकी एज पूछो तो 12 साल 13 साल. तो ये मेरे को आप बताएं ये कहां तक ठीक है.
ये सारा यूथ बैठा है आप में से, मैं वेरी ऑनेस्टली आई लास्ट दिस क्वेश्चन, किस किस ने अपने पेरेंट्स से बोला है मम्मा यार आप बोर करो प्लीज, मेरे को बाहर जाने दो, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं मेरा।
अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति चाहूंगा इस पे मैं अपने विचार प्रकट करूं, ठीक है। माँ बाप बचपन से बच्चे को प्यार से पालते पोसते हैं, ठीक है, वही प्यार अगर बच्चा समझ जाता है तो वो ऐसे डिमांड नहीं करता। ऐसे कुछ ही 10% ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे डिमांड रखते होंगे, बाकी 90% जितने भी बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ प्यार से रहते हैं। फ्रेंड्स होना सही बात है, फ्रेंड्स सबके होते हैं, माँ बाप के भी फ्रेंड्स होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जिसके मित्र नहीं होता, समझ रहे हो?
नहीं सर, फ्रेंड्स के लिए हमने मना नहीं करा, फ्रेंड्स करें कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम वो है कि ज्यादा हम फ्रेंडशिप के अंदर इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में क्रिएट कर देते हैं, जो कि आप जिनसे जब सबसे ज्यादा माता जिससे सबसे ज्यादा माता पिता से प्यार करते हैं, लेकिन हम फिजिकली रिलेशनशिप या फिर अट्रैक्शन में इतना ज्यादा डीपली चले जाते हैं कि मम्मी पापा की बात तो याद ही नहीं रहती है।
आपकी परमिशन है तो मैं कुछ कहूँ। संस्कार, नाम सुना ही होगा आपने
जी,
माँ बाप संस्कार देते हैं,
तो आप क्या चाह रहे हैं सबके मम्मा पापा के संस्कार खराब है?
नहीं, आपको बढ़िया नहीं है, इसलिए आपको बताया।
सवाल का जवाब दीजिए, क्या मम्मी पापा आपके
माँ बाप,
मम्मी पापा आपके क्या लव मैरिज की थी रिलेशनशिप में?
आपको एक बात बताता हूँ, कोई माँ बाप एक उम्र के बाद दोस्त जैसे भी होते हैं, वो हमें खुद गाइड करते हैं हमें कब कौन से रिलेशनशिप में आना चाहिए।
मोस्टली सर करते हैं, लेकिन ज्यादातर युवाओं का जो झुकाव है वो बाहर के अट्रैक्शन में ज्यादा है, इस बात को तो आपको बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा।
देखिए यूथ बाय यूथ चेंज होता है, बट जो पहले से संस्कार चले आ रहे हैं और जो प्यार चला रहा है वो तो बदलता नहीं है।
उसी साल में समझो कि 10-15 साल पहले रिलेशनशिप ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी,
पहले से
नहीं चल रहा है ये।
देखिए इसका हम सॉल्यूशन देते हैं, अगर आज के माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना शुरू कर दें, ठीक है, आप जैसा बता रहे हो बच्चे जाते कब हैं रिलेशनशिप में, जब उन्हें टाइम नहीं मिल रहा अपने माँ बाप से,
नहीं
अगर यही अवेयरनेस माँ बाप के अंदर क्रिएट हो जाए।
मैं ये बोलूंगी ना रिलेशनशिप्स बुरे हैं, किसने कहा रिलेशनशिप्स बुरे हैं? बुरा क्या है? टू मच लव, वी नीड लव अलॉन्ग विद बैलेंस अलॉन्ग विद डिटैचमेंट, बुरा लव नहीं है। लव जब टू मच हो जाता है ना कि कोई उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, दैट इज द पॉइंट जहां प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, दैट इज द पॉइंट जहां पे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, जहां पे यूथ भी परेशान होता है।
इट ऑल डिपेंड्स कि बच्चे की परवरिश किस तरह से हुई है, विदाउट परवरिश आप बता ही नहीं सकते।
सर एक बात बताएं, इतना परसेंटेज बढ़ रहा है इस चीज का, तो सब बच्चों की परवरिश ऐसी हो रही है?
हाँ सर, आपका क्या लास्ट क्वेश्चन था वापस बताइए, रिपीट कीजिए।
कोई पेरेंट अपने बच्चों की गलत परवरिश नहीं करता, वी आर नॉट सेइंग दैट।
देखिए
है ना,
मजबूरी का नाम सुना है आपने?
यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग।
मजबूरी का नाम सुना होगा ना,
अगर
नहीं, लेकिन आज के यूथ को क्या मजबूरी है कि ऐसे कदम उठाता है?
बताता हूँ, हर कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, सब चाहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छा फ्यूचर के लिए माँ बाप मेहनत करते हैं,
दैट्स व्हाई वो लोग बेचारे टाइम कई बार नहीं निकाल पाते, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू अस, वी कैन पे एक्सपेक्ट।
इफ द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स कि उनके माँ बाप इतने मेहनत कर रहे हैं तो वो नहीं बिगड़ते।
व्हाट, आई डिडंट गेट योर पॉइंट प्लीज।
एक्चुअली आप जिस यूथ की बात कर रहे हो, जो यूथ रिलेशनशिप में जा रहा है,
I'm against saying relationships are not bad at all. I'm against saying relationships are not bad at all. What is bad is too much, not maintaining the balance. That is the thing that is creating all the problems.
It all comes in the mindset.
कई बार हमने सुना है I have trust issues. Then what are the basis of trust issues? ठीक है, हम लोग कई बार इतना ज्यादा किसी के लाइक डेफिनेशन ऑफ लव हैज कम्प्लीटली चेंज्ड। लव इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू, इट्स नॉट लिमिटेड टू ट्रस्ट, इट्स नॉट लिमिटेड टू रिस्पेक्ट, नाउ डेज इट्स जस्ट अट्रैक्शन। We all agree with that. It's all attraction. कई बार we are attracted, so much attracted to a person. उसके बाद क्या होता है? ना उसमें अच्छा दिखना शुरू होता है, ना उसमें बुराई दिखना शुरू होती है. कोई सामने से समझाता है तो हटो, मैं इस बंदे को अच्छे से जानती हूँ.
Discipline होना चाहिए relationship में. Discipline भी होना चाहिए.
That's what I'm saying. Exactly. That's my point. कि देखना नहीं चाहिए.
Thank you so much.
Thank you so much.
Thank you to all for listening us. Thank you so much, everyone.
Please be careful of our time.
सभी लोग टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे. फिर से आपको बता रहे कि पहले एक मिनट के लिए दोनों को चांस मिलेगा. एक एक मिनट कंटिन्यू बोल सकते. उसके बाद आठवें मिनट पे रिंग बजेगी. उस रिंग के बाद दो मिनट और मिलेंगे. बाकी सभी जोरदार तालियों से बहुत अच्छा है. इन्होंने आपस में डिस्कस भी किया. नेक्स्ट ग्रुप, पहले एक मिनट में, अगर एक मिनट के अंदर पूरा नहीं होता है तो बेल बजेगी. पहला एक मिनट सबको कंटिन्यूअस मिलेगा. उसके बाद में आपस में आप डिबेट कर सकते हैं. उसके बाद में आठवें मिनट पे बेल बजेगी. उसके दो मिनट मिलेगा. 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद माइनस काउंटिंग शुरू हो जाएगी. ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. और अध्यक्ष महोदय से परमिशन भी शुरुआत में ले लेंगे तो उसके बाद में आपको डिबेट की परमिशन मिल गई है. ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है फिजिकल वेलबींग. वो मंच पर आ जाएंगे. जो फेवर करते इस पोडियम पे आएंगे, जिनको चैलेंज लगता है उस पोडियम पे आएंगे. और उसके बाद तैयार रहेंगे इमोशनल वेलबींग वाले.
ओम शांति. माय नेम इज मेघा एंड वी आर फ्रॉम द अनस्टॉपेबल यूथ एंड आवर टॉपिक इज फिजिकल वेलबींग. रिस्पेक्टेड स्पीकर्स, सो अगर आप परमिशन दें तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ का मतलब होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू WHO. तो एक पर्सन को हेल्दी तभी बोलते हैं जब उसकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ में क्या होता है, बैलेंसिंग होता है. अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट में कोई भी इम्बैलेंस आता है तो हम पर्सन को अनहेल्दी बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल वेलबींग का मतलब क्या होता है. फिजिकल वेलबींग का मतलब होता है कि पर्सन की बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेलबींग. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक मशीन है तो मशीन को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए हमें जो है रेगुलर इंस्पेक्शन करना पड़ता है. सिमिलरली एक ह्यूमन बॉडी को भी क्या करना पड़ता है, अच्छे से इन्हांस करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ता है, रेगुलर चेकअप करने जाना पड़ता है. उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ता है. एज वी नो वेरी वेल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. कि डिजीज तक पहुंचने से ही हमें क्या करना है, खुद को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस. थैंक यू.
नमस्कार. आदरणीय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मंचस्थ विद्वजन और एवं मेरे युवा साथियों, आज के स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट में आप सभी का स्वागत है. आज मैं प्रदीप आर्य अपनी साथी रीवा के साथ सनराइज थिंकर्स, जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहता हूं कि हम इसे शुरुआत करते हैं. जैसा कि मेरे साथी ने बताया, स्पिरिचुअल वेलबींग, वेलबींग का मतलब हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटर्नली, एक्सरसाइज पर फोकस कर रहे हैं या हम सिमिलर बॉडी को प्रेजेंट कर रहे हैं, पर क्या हम इंटरनली फोकस कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं. तो हमने कुछ पॉइंट लिए हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं. मैं साथी,
आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल वेलबींग, जब इस पर हम सब ने मिलकर एक डिस्कशन किया तो हमने ये इस कंक्लूजन पे निकले कि ये टॉपिक बहुत एग्जाजरेटेड एंड ओवरहाइप्ड है. बेसिकली ओवरऑल इट इज नॉट प्रैक्टिकल. सो इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस आती हैं. इनमें से हमने कुछ 5 मेन चैलेंजेस फिगर आउट किए हैं.
बिजी लाइफस्टाइल, मल्टीपल ऑप्शंस, साइड इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सरसाइज, इकोनॉमिकली या एक्सपेंसिव पड़ता है, साथ में टू मच इंपॉर्टेंस ऑन फिजिकल अपीयरेंस. थैंक यू.
ओके, थैंक यू साथी. गुड इवनिंग टू ऑल. अध्यक्ष महोदय आपको भी नमस्कार. ज्यूरीज आप सभी को नमस्कार. सभी युवा साथियों को नमस्कार. मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं अपने विपक्षी साथी के जवाब देना चाहूँगा. तो जैसे कि इन्होंने बोला है कि क्या हम अपनी इनर हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आपकी फिजिकल बॉडी है, सबसे पहले आपको उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप इनर हेल्थ पर जा सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए आपके लंग्स की, तो आपको रनिंग पर जाना पड़ेगा, है ना?
नहीं, अगर तो, हम सिर्फ तो, रनिंग पर
मेरी बात पूरी सुन लीजिए. तो जब तक आप रनिंग पर नहीं निकलोगे, जब तक आप रनिंग पर नहीं निकलोगे, तब तक आपके लंग्स कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? तो इनर हेल्थ के लिए आपको पहले फिजिकली वर्कआउट करना ही पड़ेगा, है ना जी?
इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि हम पहले से ही लंग्स खराब लेकर पैदा हुए हैं?
नहीं, ऐसा तो किसने बोला है?
देखो, अगर हम फिजिकली, परमात्मा की कृपा से हम फिजिकली फिट हैं, हम अपने स्ट्रेस को, बिजी लाइफ स्टाइल है, इसको मैनेज करने में ज्यादा फोकस करते हैं, तो हम स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे, थोड़े रिलैक्स रह पाएंगे. उसके बाद हम वॉक पे भी जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. पर हम डायरेक्ट रनिंग पर जा रहे हैं, इसका मतलब हम उस टाइम को अपने आप को अपडेट करने में भी समय दे सकते हैं.
बिल्कुल, आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को. लेकिन
ऑनरेबल स्पीकर, आई वॉन्ट टू से समथिंग. लाइक आई अग्री विद योर ओपिनियन. लाइक यू सेड, लाइक इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल टॉपिक एंड वी हैव बिजी लाइफ स्टाइल. ठीक है, सो लाइक हम फिजिकल फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाते. बट माई पॉइंट इज कि जब हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज वी हैव बिजी लाइफ स्टाइल. क्यों वो बिजी लाइफ स्टाइल क्यों है? कि लाइक हम लोग दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे. तो जब हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, तब भी हम क्या करेंगे? उस बिजी लाइफ स्टाइल में से कुछ ना कुछ मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालेंगे. बिकॉज हम एवरीथिंग इज नॉट लाइक, हम सब मेडिसिन से तो सब चीजें ठीक नहीं कर सकते ना. अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो करना है, बट यू हैव टू ऑल्सो डू दिस. लाइक सब चीजें अगर आप मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट होके हो जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है.
एग्जैक्टली, फिजिकल वेलबींग का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइजेस करना. वी कैन ऑल्सो डू द ऑल्टरनेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्माइल मोर. इट इज प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली प्रूवन एज वेल कि अगर हम ज्यादा हंसेंगे तो हमारे चेहरे पे जो करिश्मा आएगा, नूर आएगा, ये भी हमारी एक फिजिकल वेलबींग का पार्ट है.
I would like to say something. I get your point कि ज्यादा smile करने से like health अच्छी होती है. But on the other hand, जहाँ पर बहुत सारी mental sicknesses है, जैसे anxiety हो गया, depression हो गया, to overcome it, doctors हमें prescribe करते कि हम physical activities करें. तो हम like mental and emotional well-being starts somewhere from physical activities. So I think कि physical activities कहीं ना कहीं इन सब चीजों के well-being का base है.
आपके हिसाब से फिजिकल एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं आप, ये भी तो समझना जरूरी है ना, तभी हम आपको थोड़ा और गाइड कर
पाएं. तो स्माइल मोर, लाइक यू सेड कि हमें खुश रहना है. खुश रहने के लिए अगर आप अकेले हैं साइड में, आप फिजिकली फिट ही नहीं है, आप लोगों के साथ ही नहीं होंगे, तो अकेले खुश रहने का भी कोई पॉइंट नहीं रहेगा ना.
फिजिकली फिट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आप हर चीज एक्सरसाइज से सही कर सकते हो.
जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा. मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ.
प्लीज, आप थोड़ा सा समय हमें भी मिलना चाहिए. थोड़ा सा बस समय हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें भी अपने आप को प्रेजेंट करना है ना. हम बताना चाह रहे हैं,
कहना ये है कि एक्सरसाइज करना ही जरूरी है क्या फिजिकली फिट रहने के लिए? वो समय हम अपने आप को अपग्रेड करने में लगा सकते हैं. तो अपने आप को तो आप जब अपग्रेड करेंगे ना, जब आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. नो डाउट कि अभी आप हेल्थी हैं.
नहीं, मेरा यूथ फिट है,
है ना?
फिट है ऑलरेडी.
ओके,
यहाँ बैठे हैं.
लेकिन वो फिट बना रहे इसके लिए आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट करना ही पड़ेगा. आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते. दूसरा, आपको इन सब के साथ साथ में
आप एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा प्लीज?
जी जी जी. आज के बिजी शेड्यूल के हिसाब से लोगों के पास समय कम है. यही एक मेन पॉइंट रहता है कि हम काफी सारा वर्क करते हैं. कई सारे लोग काफी रात में आते हैं घर पे, फिर उसके बाद लेट नाइट स्लीप सोने जाते हैं, तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठे?
आप उस यूथ से एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक्सरसाइज भी करे?
ठीक,
वो पहुंच नहीं पा रहा टाइम से.
आजकल के बिजी शेड्यूल में लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं अपने आपको सस्टेन करने के लिए.
लाइक यू सेड कि मतलब कि नाइट शिफ्ट होती हैं एंड फिजिकल वेलबिंग में हम लोग भी यही नहीं कहना चाह रहे कि सिर्फ एक्सरसाइज फिटनेस योगा करना जरूरी है. बिजी लाइफस्टाइल है यूथ का, है सबको समझ आता है. बट जस्ट इनहेल एक्सहेल, यू आर एट अ प्लेस, यू कैन इनहेल, यू कैन एक्सहेल, जस्ट 2 मिनट एक्सरसाइज, 2 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन विद.
हम अपने स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन से, लाइक हम लोग ओनली एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं है, एक्सरसाइज प्लस रेगुलर डाइट, इन सब से हम लोग अपने आप को बहुत इनहांस कर सकते हैं. हम अपने मतलब लाइक फिजिकल वेलबींग रख सकते हैं बाय अ कॉम्बिनेशन थेरेपी. इट इन्वॉल्व फिजिकल एज वेल एज लाइक फिजिकल में हम लोग एक्सरसाइज प्लस डाइट.
एग्जैक्टली,
एंड इसके लिए हम लोगों को कंसिस्टेंसी
करना,
कंसिस्टेंसी रखना है एंड सेल्फ कंट्रोल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए.
और आपको ना अच्छे बेहतर रिजल्ट्स के लिए, किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए ना, आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी.
सामने वाले को सुनना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है. सामने वाले को सुनना है ना, अच्छी एक्सरसाइज है. उसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर हम एक्सरसाइज को किस तरह से समझ रहे हैं इस पर फोकस करना जरूरी है.
हमने एक घंटा निकाल दिया साइड में एक्सरसाइज का, बट इफ यू आर इन स्ट्रेस एंड नॉट एग्जैक्टली, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं एक जगह बैठ के, बट अगर हम मेंटली कहीं और है तो उस फिजिकल एक्सरसाइज का कोई फायदा भी नहीं है हमारे लिए.
जैसे ही आप अपना प्लेस चेंज करेंगे और आप वर्कआउट करेंगे,
कंक्लूड करते हैं देखो, बिजी लाइफ स्टाइल में हम नहीं टाइम निकाल पाते, हमें निकालना चाहिए. मैं सहमत हूँ. दूसरा, मल्टीपल ऑप्शंस होने के कारण हमारी लेवल ऑफ नॉलेज कह लीजिए, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ जाते हैं, कभी योगा, कभी एक्सरसाइज, कभी जिमिंग. इससे भी बचना चाहिए, हमें रिसर्च करके अच्छी तरह से अपने आप को आगे ले जाना चाहिए. तीसरा है साइड इफेक्ट. हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि मच एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज के एग्जांपल हमारे सामने, कार्डियक अरेस्ट वगैरह, और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन टेकिंग करना, ये भी नुकसान दे रहा है, तो हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए. एक्सपेंसिव, अगर हम अच्छी एक्सरसाइज चूज करते हैं तो अच्छी जिम में जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा अच्छी जिम में जाने के लिए.
ऐसा तो नहीं है कि हमें जो है लाइक एक्सरसाइज खाली जिम में ही होती है. लाइक रनिंग एक्सरसाइज होती है, ब्रिस्क वॉकिंग होती है, स्विमिंग होती है, देर आर मल्टीपल ऑप्शन. थिंग इज
दे ऑल आर एक्सपेंसिव.
आप ऑल आर के प्राणायाम भी कर सकते हैं.
एवरीवन इज लाइक डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड.
एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, हम यहाँ बैठे हैं ना, हम पूरे अपने सदस्यों को देखकर, हमारे देश में 80% जनसंख्या ऐसी है जिसको किसी न किसी तरह से एक्सरसाइज की ओर ले जाना है, तो हमें बेसिक पर बात करनी पड़ेगी. हम उनको लेकर बात कर रहे हैं, उनके लिए एक पॉइंट रखे हैं. 20% तो अवेयर है, वो 20% जो स्टूडेंट, जो स्ट्रेंथ है, जो युवा है, वो तो अवेयर है. हमें उन 80% लोगों के लिए मेहनत करनी है जो इससे वंचित हैं, जिनको समझाना है. थैंक यू सो मच.
अभी कुछ कहना मैं भी चाहूंगा. जैसे कि अभी दोनों पक्षों से हमने बात करी, तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया. अगर काया ही निरोगी नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के सुख को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते. तो इसका महत्व जिस दिन हम समझ लेंगे, उस दिन एक्सरसाइज के लिए भी समय निकल जाएगा, खान पान भी सही हो जाएगा, और प्रॉपर रेस्ट भी रहेंगे, और सदा मुस्कुराते भी रहेंगे. तो इसी के साथ, सदा मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और जीवन
और
को
हमारा भी आप सबको यही संदेश है कि प्लीज एक्सरसाइज की ओर या योग की ओर, प्राणायाम की ओर, अपने स्वास्थ्य की ओर जरूर ध्यान दें. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद.
आप तो एग्री कर गए.
बहुत बहुत थैंक यू सो मच.
ओके, वील एंड विद द टॉपिक, युवा के हर कदम अथक और निरंतर. युवा के हर कदम अथक और निरंतर. थैंक यू.
थैंक यू वेरी मच. जोरदार अभिनंदन. नेक्स्ट ग्रुप है इमोशनल वेलबींग. इमोशनल वेलबींग के फेवर वाले इस पोडियम पे, चैलेंज वाले उस पोडियम पर. इमोशनल वेलबींग, रामकृष्ण भाई कुछ बात करना कहना चाहते हैं आपसे.
डिबेट का स्पिरिट बहुत अच्छा है. इट्स रियली वेरी वेरी एनर्जाइजिंग. फिजिकल वेलबींग में भाई थोड़ा सा एक बात देखो, थोड़ा खेती में माँ बाप को मदद कर दो, वो भी एक्सरसाइज है. घर में कपड़े धोने में मम्मा को थोड़ा हेल्प कर दो, वो भी एक्सरसाइज है. थोड़ा झाड़ू पोछा लगाने में भी मदद कर दो, वो भी एक्सरसाइज है.
A very good evening to respected speaker, honorable chief guest, keynote speaker, esteemed jury, members of parliament, and brothers and sisters. We are from Pathfinders, and our tagline is From Confusion to Clarity. I am Aishwarya.
I am Priyanka.
And we today are going to talk about emotional well-being. So, we all know that emotional well-being ki importance in our life mein, physical well-being jitni to nahi usse zyada hi hai, main ye kahun. Matlab, emotional well-being, emotions in our life mein, almost har jagah involved rehte hain. Be it anything, you pick up history, you see all the things that have started, all the iconic things that have been made, were somewhere driven by emotion. We see this iconic institute that we are standing in today, Brahma Kumaris. This was too started by an emotion of doing good for others. So today we are going to talk about how to keep those emotions organized, well intact and healthy.
ओम शांति आदरणीय अध्यक्ष महोदय माननीय जूरी एवं उपस्थित गणमान्यों को कोटि कोटि प्रणाम मैं टीम स्पार्कलिंग स्टार को नेतृत्व करने यहां पर मंच पे उपस्थित हूं मेरी साथी
जीवन प्रिया
मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगा हमारे विषय से गणमान्यों को अवगत कराने का
तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमारी जो बॉडी है वो भावनात्मक तौर पे हम लोग ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए या फिजिकली हमारी बॉडी के साथ तो जैसा कि बहन ने बताया कि हमें भावनाओं से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन अगर हम कहीं व्हीलचेयर पर बैठे हैं और सिर्फ भावनाएं चल रही है पैर नहीं चल रहे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमें कुछ करने के लिए भावनाओं के साथ साथ मैं उनकी इज्जत करती हूँ भावनाओं के साथ साथ बॉडी भी काम करनी बहुत जरूरी है थैंक यू
That's a very good point. कि बॉडी काम करना जरूरी है पर बॉडी को काम करवाने के लिए अंदर एक फीलिंग की जरूरत होती है जब आप व्हील चेयर पे हैं और आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए अपने मन में वो हिम्मत वो विल पावर चाहिए एंड दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम इमोशनल वेलबींग
हम उस विल पावर उस एंथुजियाज्म एंड उस फ्रीडम ऑफ थॉट को ही एक्सप्रेस और उसका जो फेवर रखने के लिए इस मंच पे आए तो आप हमारे साथ एग्री करते हैं तो दिस इज गुड फॉर अस
एक्चुअली
वी आर डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एंथुजियाज्म
आई थिंक वी आर टॉकिंग फॉर इमोशनल वेलबींग एंड यू गाइज वर गोना टॉक अबाउट आई लाइक वी हैड दिस थॉट दैट वी यू गाइज वर गोना टॉक अबाउट द चैलेंजेस यू वर फेसिंग विद मेंटल वेलबींग
Yes, this is what we are saying. We are saying the role of freedom of express, freedom of thought and enthusiasm in emotional well-being. So you are agreeing with us at the very start of this?
Yes, yes, we do agree with you.
This is good for
us. Thank you so much.
Thank you. So I think I would like to express, गणमान्यों को मैं बताता हूँ कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एंथुजियाज्म है सबसे पहले माननीय रामकृष्ण जी ने अभी अभी अपने स्पीच में कंक्लूड करते हुए कहा था कि युवा तूफानों से टकराता है तो जब ये तूफानों से टकराने का या ऐसा जब हम वर्ड सुनते हैं तो एंथुजियाज्म या जोश जो है वो अपने आप ही एक्सप्रेस हो जाता है उसके अंदर और उसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ थॉट है this is so essential for human development that it is enumerated in our preamble of our constitution and jo enthusiasm hai wo innovation ya navachar ki janani hai to usko bhi hamare mool kartavyon mein include kiya gaya hai so I think this is a very solid favorable argument for the
I want to important. Add one thing
so with due your permission freedoms comes with responsibility agar hum self control nahi hai hamare paas to freedom to hame careless bhi bana dega उस लापरवाही से हमें नुकसान भी हो सकता है इवन कंट्री को भी सफर करना पड़ सकता है बट हम रेस्पॉन्सिबल
होंगे हम कहना चाहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ थॉट ठीक है
यस फ्रीडम ऑफ थॉट बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता एकदम पूरे तरीके से यस yes, कुछ सम लिमिटेड एक्सटेंट आप अलाउ कर सकते हैं उसे लेकिन जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते मुझे कुछ भी करना है लाइक आपको रिस्पॉन्सिबल तो होना पड़ेगा ना आपके एक्ट के लिए आपके एक्शन के लिए
नहीं श्रीमान हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन के आउटराइट अगेंस्ट नहीं है हम ये कह रहे हैं कि अगर अत्यधिक डिसिप्लिन इम्प्लाई किया जाए तो ये आपको एक इंसान के डेवलपमेंट में बाधक होता है. सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड ऑन टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड एंथुजियाज्म, इट कैन बी हिंड्रेंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. दैट इज व्हाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो
मेंशन.
प्लीज ब्रदर लेट मी स्पीक. In our constitution, there is no mention of self-control and discipline, but there is an expression of freedom of thought. So,
I would like to add one thing, sir. Sir, right now we are not talking about expression of rights. We are talking about self-disciplining of thoughts. Yes, and like, when you give freedom to your thoughts, it can also lead to negative aspects. क्योंकि थॉट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए या हमारे लिए सिर्फ हमेशा अच्छा करे वो जरूरी नहीं है. द होल पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ अस सिटिंग हियर इज टू थिंक एंड इज टू लाइक लर्न हाउ टू यू नो कंट्रोल ईच एंड एवरी नेगेटिव थॉट एंड टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव वन.
थैंक यू सो मच ऐश्वर्या. इन आवर प्रीएम्बल योर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम टू स्पीक और फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन एनी पाथ any career point of view, that is possible. But if you say, मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी सोच सकता हूँ और मैं कोई discipline नहीं है, discipline तो आपको सिखाता है कि आप अपने actions और
को I never say मैं कुछ भी कर सकता हूँ या मैं कुछ भी सोच सकता हूँ.
Freedom of thought
नहीं सर, I want to add one thing.
सर आप कह रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि हमें बहुत ही अनुशासित रहना चाहिए, तो लकीर का फकीर होना भी सही बात नहीं है. कई बार हमें लकीर से हटके भी, भीड़ से हटके भी चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो आपकी जो
मैम भीड़ से हटके चलने में भी डिसिप्लिन चाहिए आपको.
डिसिप्लिन हमें ये बताता है कि आपको जो ये रूल एंड रेगुलेशन है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें रूल से हटके भी कुछ करना पड़ जाता है.
एंड यू नो
इसी बात को हम आपको बता रहे
हैं. चलो मैम, सेल्फ इवैल्यूएशन भी आता है.
रजनीश, आई वॉन्ट टू एड वन थिंग. जैसे कि सर ने बोला, थैंक यू सो मच फॉर योर वैलिड पॉइंट, जैसे कि सर ने बोला था रामकृष्ण सर ने कि फ्रीडम होना चाहिए, आई टोटली एग्री एंड आई थिंक सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो एग्री हैं. बट फ्रीडम इतनी अगर किसी को मिल जाए कि जहाँ पे पेरेंट्स के रिस्पेक्ट को ही भूल जाए, और अगर फ्रीडम इतनी मिल जाए, क्योंकि यूथ के साथ अगर हम देखें तो ज्यादातर क्या हो रहा है कि फ्रीडम तो हम ले रहे हैं पर हम फ्रीडम के साथ साथ दूसरों के रिस्पेक्ट भूलते जा रहे हैं.
बहन,
तो हम कहना
बहन
जा रहे
आप आई थिंक रेलेवेंस से भटक रहे हैं. मैं अभी आपको एक बात कहता हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि अनुशासन के नाम पर विचारों की अभिव्यक्ति और जो एंथुजियाज्म है उसको अगर सप्रेस कर दिया जाएगा तो इवेंचुअली वो कुंठा और विकृति के तौर पे सामने आएगा और उससे अपराध, रेप, सुसाइड ऐसी चीजें होगी. अब आप प्लीज डिफेंड करिए.
इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इमोशनल वेलबींग होना जरूरी है, क्योंकि क्राइम सारे इसीलिए होते हैं क्योंकि इमोशनली लोग स्ट्रॉन्ग
नहीं हैं. इमोशनल वेलबींग होना चाहिए.
तो हमारा टॉपिक है, हम इमोशनल वेलबींग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. आप अगर हमसे एग्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है.
नहीं सर, आपने शायद समझा नहीं है अपना टॉपिक.
आप समझ नहीं पा रहे हो हमारा टॉपिक.
आपको इमोशनल वेलबींग में सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन का रोल बताना है.
यही हम बता रहे हैं आपको, और आप हमारे साथ एग्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है.
और मैं
आई वांट टू ऐड वन थिंग,
लाइक सेल्फ कंट्रोल में कोई भी हमारी टेम्पटेशन है, कोई भी लाइक एंगर है या फिर हमारी कोई भी डिजायर है, हम उसको सेल्फ कंट्रोल के तहत ही उसको हम अपनी क्षमता बना सकते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल करके
डिसिप्लिन के हमें सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए. तो अगर हम एक इंसान को, अगर आप बहुत कुछ बोलने के लोग नेगेटिव थॉट दे रहे
हैं, अगर आपको अभी आइसक्रीम खाने
है, कंट्रोल कर रहा है, बट एक लिमिट होती है ना सेल्फ कंट्रोल की भी. कभी तो वो कंट्रोल टूटेगा, किसी दिन तो ब्लास्ट होगा ही.
कंट्रोल में ब्लास्ट होता ही नहीं है. कंट्रोल में आपको लॉन्ग टर्म अपना जो गोल है वो अचीव करना होता है.
मैम तभी तो सर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं कि सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, क्योंकि अगर डिसिप्लिन होगा तो कंट्रोल नहीं टूटेगा.
मैं बताता हूँ, अपने राष्ट्रवादी विचारक बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि अगर आपको स्वराज्य प्राप्त करना है तो राजनीतिक अनुशासन से स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्रांति की अभिव्यक्ति करने से स्वराज्य की प्राप्ति होगी. तो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ये एक ह्यूमन की लाइफ में बहुत हाई मॉरल वैल्यूज हैं, आई रिस्पेक्ट दैट. बट आप उसके नाम पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस ऑफ थॉट्स एंड आप इनको
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई रोक नहीं है, आप आजाद हैं अपनी विचार रखने के लिए.
एक्सप्रेस की बात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब आप हमेशा लकीर के फकीर या फिर कहें कि अनुशासन में रहें, तो ऐसा
अनुशासन यहाँ पे थॉट्स की बात हो रही है. थॉट अगर थॉट्स अनुशासित नहीं है तो इट कैन लीड टू डिजास्टर्स टू. Because we have seen it in past where emotions go negative. We have all seen ki what it leads to.
तो यहाँ पे बात एक्सप्रेशन
लेकिन सर्वाइव करने के लिए हम हर जगह हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम देखा जाए अभी इन्हीं दिनों की बहुत ताजा खबर चल रही है जनपद पे जो रेसलर्स बैठे हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने अपने अनुशासन, एक खिलाड़ी होता है सबसे अनुशासित माना जाता है, तो उन्होंने क्या अपने सेल्फ कंट्रोल को या सब कुछ नहीं बना के रखा होगा?
बिल्कुल,
किसी चीज की अति हो जाती है तब हमें कभी ना कभी तो हमारा सेल्फ कंट्रोल एक साइड में रहना पड़ता है।
सिस्टर, एग्री विद यू, रेसलर्स बहुत डिसिप्लिन है तभी वो उस मुकाम पे पहुंच पाए हैं, अगर वो डिसिप्लिन नहीं होते कभी नहीं पहुंच पाते।
लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी चीज का कंट्रोल जब आपके ऊपर आ जाता है, मैं आपकी चीज को डिनाई नहीं कर रही, एग्री कर रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज होती है ना कि जब हम उस चीज को
सेल्फ कंट्रोल इज गुड फॉर अस।
Rajneesh, we can conclude in this that as Tony Robbins, a great author and a speaker, he said that इंसान को उसकी सोच बनाती है, तो अगर हमारी सोच अच्छी होगी, डिसिप्लिन होंगे, तो हम अपनी लाइफ और इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छे से जी भी पाएंगे और अपनी लाइफ को भी आगे बहुत अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।
From our side, I want to conclude and I want all of you to listen carefully. To be a better person, we need self-controlled freedom of thoughts and a disciplined enthusiasm in youth.
That's our point.
So you use discipline.
That's our point.
So our point is completed. Thank you so much.
Thank you so much.
Time is over.
Thank you.
बहुत बहुत अभिनंदन। तालियां बंद हो गई भाई।
इमोशंस, जीतू भाई जस्ट वन मिनट। इमोशंस अपने हैं, अपने राइट्स में हैं, परंतु जब इमोशन एक्सप्लोजन होगी तो उसमें दूसरे का नुकसान हो जाता है। हमारे अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा अपनी बाउंड्रीज के अंदर, जिससे दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो। इस बात का हमें वेलबींग के लिए विशेष ध्यान रखना होगा।
बहुत सुंदर, सभी एनर्जी से आ रहे हैं। बस आप सबसे निवेदन है, एक दो चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए। एक तो जिनको आपने, आपके ग्रुप ने सर्वसम्मति से स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया है,
अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे गेस्ट आए हैं उनको प्लीज।
जी, थैंक यू सर। तो आप आपने जिनको भी स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया है उनको थोड़ा सा आप ज्यादा वेटेज दीजिए। अगर आपको सपोर्ट करना है तो एक वन लाइनर सपोर्ट काफी होता है, ठीक है। और दूसरा, माइक को कोई हाथ नहीं लगाएंगे, माइक से थोड़ा दूर रखेंगे, थोड़ा अटेंशन रखेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय के आदेश अनुसार हमारे बीच आज जो विशेष अतिथि आए हैं, डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी। डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, जिन्होंने अपना MBBS MD मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया, अभी DM ट्रेनिंग इन न्यूरो साइंसेस फ्रॉम GB पंत इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, एडवांस एपिलेप्सी ट्रेनिंग एट वेनिस एंड वेनिस इटली, करंटली वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एट GP पंत इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। खास विशेष बात तो यह है कि अभी अभी रिसेंटली इलेक्टेड एज एकेडमिक काउंसिल मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सोशल इंटरेस्ट इनटू साइंस बिहाइंड अवर थॉट्स, इमोशन एंड एक्शंस, द रिलेशन बिटवीन मॉडर्न न्यूरो साइंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड द प्रैक्टिस ऑफ राजयोगा लाइफस्टाइल, इनके ऊपर काफी रिसर्च कर रहे हैं सर। साथ में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड सर को मिले हुए हैं, जिसमें विशेष वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी फेलोशिप अवार्ड है। हमारे डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी ने 500 मेडिकल पर्सनल को एट आशा किरण होम फॉर मेंटली रिटार्डेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस GNCT दिल्ली, उनके लिए काफी काम किया हुआ है। अवार्ड स्पीकर एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम ऑन साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, इसके ऊपर YouTube पे उनका एक आर्टिकल, उनका एक वीडियो पब्लिश हुआ है, जो काफी लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में डिटेल या कंसेप्ट क्लियर करता है। the topic of brain rewire to bring sanskar transformation. So, ऐसे विशेष हमारे अतिथि को मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने प्रतिभा से हमारे सदन को परिचित कराएं और हमारे युवाओं को मार्गदर्शन करें. डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी.
अ वेरी गुड इवनिंग. आवाज सब क्लियर है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति अनुसार हम इस गणमान्य सभाजनों के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं. अभी बहुत अच्छा हमारे युवाओं ने चर्चा की आपस में वेलबींग के ऊपर. पहले थी रिलेशनशिप्स में वेलबींग, फिर आई बात फिजिकल वेलबींग और फिर आई इमोशनल वेलबींग. वेलबींग, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को देखती है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप सबको पता है, वो हेल्थ की एक डेफिनेशन देती है. वो डेफिनेशन है, हेल्थ इज फिजिकल मेंटल सोशल एंड, उन्होंने एक वर्ड अभी ऐड किया, स्पिरिचुअल वेलबींग. तो जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक वेलबींग है. वेलबींग से हम क्या समझते हैं? अभी बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था, रिलेशनशिप होने चाहिए नहीं होने चाहिए. आजकल की जनरेशन है, रिलेशनशिप भी होंगे, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो समझते हैं कि रिलेशनशिप केवल लड़की लड़के की बात नहीं है. रिलेशनशिप का मतलब है माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, हमारे साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ, हमारे घर के बाहर जो जमादार है, जो सफाई कर रहा है, उसके साथ. उसके साथ भी तो एक रिश्ता है ना आपका. अपने टीचर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सब एक रिलेशनशिप में आ जाता है. रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, हम उसको कैसे देखें कि क्या रिलेशनशिप सही है क्या गलत है? जब जब रिलेशनशिप अपनी मर्यादा से बाहर गया है, तब तब वहां पर चैलेंजेस आए हैं और तब तब प्रॉब्लम्स आई हैं. रिलेशनशिप जब अपनी मर्यादा के अंदर होता है, तब ना तो उसमें चैलेंजेस हैं और ना प्रॉब्लम्स हैं. बहुत अच्छी बात है, आप अपने सहपाठी को सहपाठी की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना कौन सी आपको संस्कृति सिखाती है? कौन सी संस्कृति कहती है कि जो उम्र पढ़ने की है उस उम्र में आप जाके ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं? क्या आपके माता पिता ने आपको इसलिए स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा कि वहां पर आप प्यार मोहब्बत की बातें करें, या इसलिए भेजा कि आप पढ़ के कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, पायलट बने, एक अच्छा इंसान बने? जो उम्र पढ़ने पढ़ाने की है, उस उम्र में प्यार मोहब्बत की बातों के लिए तो जिंदगी पड़ी है. इसीलिए पहले गुरुकुल के समय में 25 साल तक स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य पालन किया जाता था. क्यों? उसका कारण है, मैं एक डॉक्टर हूं और वो भी दिमाग का स्पेशलिस्ट हूं, दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जानते हैं. आज आपके सामने ऐसा राज बताएंगे जिसको सुन के आपकी आंखें खुल जाएंगी. हमारे सामने इतने युवा बैठे हैं. 25 साल तक हमारा आगे का जो हिस्सा होता है ना, फ्रंट का ब्रेन, उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं. और उस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है बुद्धि का, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, जिससे हमारा IQ बनता है. उससे हम जज कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, रीजन कर पाते हैं कि हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल कर पाते हैं कहां पर अपने आप को बोलना है कहां नहीं बोलना है. क्या आज के युवाओं में ये बातें हैं? क्या आज वो डिसीजन ले पाते हैं? छोटी छोटी बातों के लिए उनको पूछना पड़ता है, काउंसलर के पास जाना पड़ता है, मेमोरी फोकस आता है। आम समस्या जो हम आजकल के युवाओं में देखते हैं वो है, सर हमारी मेमोरी हमें याद नहीं रहता। आप सब पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम आम है या नहीं है? ये क्यों है? फोकस नहीं है, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। ये सभी हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। और जब 25 साल से पहले हम अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं या इन सब बातों में पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट हमारे सीधा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे आता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो 25 साल तक विकसित होता है वो पूरा विकसित नहीं हो पाता। और इसीलिए आज की जनरेशन में हम देखते हैं ये कारण बनता है हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की अंडर डेवलपमेंट का। और ये सिद्धांत न्यूरोसाइंस प्रूव कर चुका है। अमेरिका में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मरियम ग्रॉसमैन, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, वो एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। उन्होंने 15,000 युवाओं को देखा अमेरिका में 13 साल से लेकर 25 साल तक, और देखा कि जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य सेलिबेसी तोड़ा, ये लव रिलेशनशिप्स में पड़े, 7 गुना सुसाइड रेट ज्यादा था, 10 गुना डिप्रेशन ज्यादा था, 3 गुना एंग्जाइटी ज्यादा थी, डिसीजन मेकिंग नहीं थी। आप लोग युवा हैं, जो मर्यादाएं आपके लिए बनाई गई हैं उनको फॉलो करना आपके लिए अनिवार्य है, किसी कारण से बनाई गई है और आपको वो भारतीय संस्कृति मिली है जिसकी धरोहर है ये। दूसरा, फिजिकल वेलबींग जो आप लोगों ने बात किया, एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं समय है क्या करें। फिजिकल वेलबींग केवल एक्सरसाइज से सीमित नहीं है। ब्रेन के डॉक्टर होने के नाते जो बीमारियां हम 60 साल के बाद देखते थे, आज वही बीमारियां 18 साल से 40 साल की उम्र में देखते हैं। आर्टरी में ब्लॉकेज है, ब्रेन पैरालाइज हो गया, हार्ट ब्लॉक हो गया, कारण क्या है? लाइफस्टाइल। फिजिकल वेलबींग मतलब आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये आपके सुबह उठने से लेकर रात के सोने के समय तक आता है। आपने एक्सरसाइज तो किया लेकिन एक्सरसाइज का टाइम क्या है? हमारे पास टाइम नहीं है, हम रात को 2 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं, वो समय नहीं है एक्सरसाइज का। बॉडी की एक क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी, इसके पीछे पूरी साइंस है। जब आप सोते हैं तो सोते समय आपके शरीर में केमिकल रिलीज होता है मेलेटोनिन, जो आपकी बॉडी को रिकवर करता है। आज के समय में युवा कितने बजे सोते हैं, कितने बजे सोते हैं? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और कहीं तो 4 बजे सोने जाते हैं जब सुबह उठने का समय होता है। हाँ, कारण क्या है? जैसे ही अंधेरा होता है ना, मेलेटोनिन बनना शुरू हो जाता है, लेकिन आंखें अगर खुली हैं तो वो मेलेटोनिन ठीक से नहीं बनेगा, बॉडी की रिकवरी नहीं होगी। जागते, जैसे आप जागते हैं, सूरज उगता है, सीरोटोनिन केमिकल बनता है, और सीरोटोनिन केमिकल होता है हैप्पीनेस मॉलिक्यूल। हैप्पीनेस मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो आप कैसा फील करेंगे? डिप्रेशन, उदास उदास, एनर्जेटिक नहीं होंगे। और यही कारण है 8-9-10 घंटे सोने के बाद भी युवा एनर्जेटिक नहीं उठते। जो आज के युवा 18-19 साल में काम नहीं कर पाते, 40-50-60 साल के हमारे जनरेशन अभी तक कर पाती है। कारण क्या? उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, खान पान, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ वही फिजिकल हेल्थ नहीं है। आपका खान पान कैसा है, खान पान में आपकी बैलेंस डाइट है या नहीं है, आप कहां से उठा के खा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बाहर से ये जो प्रोटीन शेक्स हैं, आप कितना भी प्रोटीन ले लो लेकिन क्या वो स्वाद कभी मां के खाने का जो स्वाद है कभी आएगा आपको बाहर के खाने में? हाँ, सिर्फ स्वाद ही नहीं होता, उसके अंदर उसका प्यार भी भरा होता है। ये पूरी साइंस है, ये साइंस ने देखा है कि जब किसी जानवर को मारा जाता है और नॉन वेजिटेरियन खाया जाता है तो उसके शरीर में एड्रेनालिन कॉर्टिसोल नॉन एपिनेफ्रिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं और ये हार्मोन्स उसके अंदर एंगर ऑक्सीडेंट ज्यादा पैदा करते हैं। वो इमीडिएटली तो उसको ताकत देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको बीमारियां करते हैं, ये हमारा अनुभव है। स्ट्रोक के केसेस, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, स्टमक प्रॉब्लम्स युवाओं में क्यों कॉमन है? ये जो उठने और सोने का जो समय नियंत्रित नहीं है और दूसरा खान पान का जो प्रॉब्लम है वो मेजर इश्यू है, इसको आपको देखना होगा। फिजिकल एक्टिविटी, जैसे अभी रामकृष्ण भाई साहब बता रहे थे आपको, आप अपने मामा की हेल्प करते हो, थोड़ा सा काम फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वो फिजिकल एक्टिविटी आपका पार्ट ले लेगा, लेकिन मेजर जो आपका है उठने का समय, सोने का समय, क्या खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये फिजिकल एक्टिविटी में सब फिजिकल हेल्थ में आ जाता है। तीसरा जो आपका आया इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग, अभी बात हो रही थी कि कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ बात हुई कि कितना कंट्रोल करें, कितना कंट्रोल करें। तो जहां पर इमोशनल हेल्थ की बात आती है वहां पर हम एक मेजरमेंट करते हैं जिसको हम EQ कहते हैं। आपने IQ सुना होगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट, ऐसे ही होता है एक EQ, इमोशनल क्वेश्चेंट। आपको मालूम है कोई भी इमोशन खराब नहीं होता, कोई भी इमोशन खराब नहीं होता, हर इमोशन पॉजिटिव है। हम कहते हैं डर का इमोशन भी पॉजिटिव है। आप कहोगे डर कैसे अच्छा है, आप लोग कहते हो ना नहीं हम तो निडर हैं, डर नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं डर होना चाहिए, हम कहते हैं डर होना चाहिए। किस चीज का डर होना चाहिए? गलत काम करने से डर होना चाहिए, गलत काम करने से डर होना चाहिए। और जहां आप सच्चे हो वहां पर आपको निडरता से खड़े होना चाहिए, वहां आपको निडरता से खड़े होना चाहिए। आज के समय में निडर होके, ये तो कहते हैं, एक बच्चा भी कहता है, एक बच्चा किसी को मार के आता है तो उसके माँ बाप क्या कहते हैं, उसके माता पिता कहते हैं बहुत बढ़िया काम किया बेटा, तू शेर का बेटा है, तू शेर का बेटा है। हाँ, जहां डरना चाहिए था वहां उसको निडर बना दिया, और जहां पर उसने गलत काम, कोई गलत काम उसको डराना चाहिए था वहां पर उसको नहीं डराया। तो इमोशनल हेल्थ, अपनी EQ को बढ़ाना है, अपने इमोशंस को नियंत्रण करना है, कहां पर कैसे यूज करना है, तो ये है इमोशनल हेल्थ। जब हम बात करते हैं फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की, जो WHO की डेफिनेशन है, तो ये तीनों ही आपको चाहिए। अगर तीनों में से कोई कमी है तो आप हेल्दी नहीं कहे जाओगे, ये WHO की डेफिनेशन है। अब ये हम ले कैसे, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। हम यहां पर ब्रह्मा कुमारी इसमें आए, ज्ञान सरोवर, इतना प्यारा कैंपस आपको मिला, यहां आपको क्या मिल रही है, स्पिरिचुअल हेल्थ। उसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत है स्पिरिचुअल हेल्थ की, क्यों करें मेडिटेशन, क्यों करें, क्या जरूरत है? शुरुआत फिजिकल हेल्थ से होती है अगर, तो वो खत्म होती है स्पिरिचुअल हेल्थ पे। वो कैसे? सोशल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, सामाजिक, सामाजिक मतलब रिलेशनशिप्स में हेल्थ, जो आज के टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें सभी एस्पेक्ट्स आपके कवर हुए। सामाजिक अर्थात रिलेशनशिप्स, जो आप समाज में रिलेशनशिप्स बनाते हो, वो रिलेशनशिप्स का आधार क्या है? कोई भी समाज का आधार क्या होता है? समाज का आधार एक इंसान, व्यक्ति होता है। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है तभी वो समाज में अपना आउटपुट दे सकता है। अगर वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड है, डिस्टर्ब्ड है, तो क्या वो समाज में आउटपुट दे पाएगा? नहीं दे सकता। तो सोशल हेल्थ के लिए क्या चाहिए? फिजिकल और मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब फिजिकल हेल्थ पर आ जाइए। फिजिकल हेल्थ कब अच्छी हो सकती है? फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन फिजिकल हेल्थ तभी अच्छी होगी जब आपकी मेंटल पीस होगी। आज के समय में फिजिकल हेल्थ, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन मेंटल प्रेशर से आज के समय में 70% साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स का मतलब है साइकिक, माइंड से सोमा मतलब बॉडी, बॉडी पे असर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मास्टर कंट्रोलर ऑर्गन कौन सा है? हमारा ब्रेन है। अगर ब्रेन स्वस्थ नहीं है, ये जो हम हाथ भी उठा रहे हैं ना, ये भी ब्रेन की वजह से उठता है। ब्रेन से सिग्नल जब जाता है हाथ में, तब ये हाथ उठा सकते हो आप। पैरालाइज जब होता है तो ब्रेन में क्लॉट होता है, तब हाथ पैरालाइज होता है। तो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है आपकी, तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती। अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, तो आपको बीमारियां ज्यादा लगती हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। ये साइंस प्रूवन है। व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, आपने देखा होगा। जुकाम खांसी जल्दी हो जाता है अगर आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो। और अगर आप खुश हो तो आप कुछ भी करो, कैसे भी वातावरण में जाओ, कितनी भी बारिश हो, तूफान हो, लेकिन आप संभाल लेते हो। तो फिजिकल हेल्थ का भी आधार क्या है? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ कैसे आएगी? वो हमने यहां आके सीखा, ब्रह्मा कुमारीज में सीखा। मेंटल हेल्थ, इमोशंस, कौन से इमोशंस किस समय में अप्लाई करने हैं, कहां पर मुझे गुस्सा दिखाना है, किसके पर गुस्सा दिखाना है? दूसरे पर गुस्सा नहीं दिखाना, अपनी कमजोरियों पर गुस्सा दिखाना है। आपने काली का नाम सुना है ना? काली ने राक्षस का संहार किया। राक्षस कौन है? हमारे अंदर की बुराइयां। हम दूसरे को गुस्सा दिखाते हैं। काली बनना है अपनी बुराइयों पर, और दूसरों के लिए क्या बनना है? दुर्गा माँ, प्यार बरसाने वाली दुर्गा माँ। हमने इक्वेशन चेंज कर दी, खुद की बुराइयों से प्यार करना शुरू कर दिया और दूसरों पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये किसने सिखाया हमें? ये हमारी धरोहर, जो हमारी संस्कृति है, हमारा आध्यात्मिक संस्कृति जो है, जो केवल भारत के पास है। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि वही अध्यात्म का पाठ पूरे संसार को, पूरे विश्व को पढ़ा सकता है, वही पढ़ा सकता है। हम दूसरों को कॉपी करने लग गए, वेस्टर्न पॉपुलेशन को कॉपी करने लग गए, वो ऐसा करते हैं, जबकि होना चाहिए था उल्टा। हमारी जो संस्कृति है, हमें उनको बताना चाहिए था कि देखो, इसी से ही जब आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, आप आध्यात्मिक में आगे होंगे, तभी आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी होगी। शरीर अच्छा होगा, मन स्वस्थ होगा, तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। तो कहां से शुरू हुआ? बीज क्या है? बीज है अध्यात्म। और यही अध्यात्म जो यहां पर आप ब्रह्मा कुमारी में सीखने भी आए हैं, और आप जरूर सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी युवाओं की तरफ से भी हमारे डॉक्टर साहब को दोबारा बहुत बहुत थैंक्स, एक बार जोरदार तालियों से। बहुत वैल्यूबल चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें सही ढंग से हम सबके बीच में रखी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो अपनी डिबेट शुरू की जाए। तो डिबेट के लिए नेक्स्ट ग्रुप को आमंत्रित करते हैं, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग के जो फेवर वाले हैं, जो इस पोडियम पे आ जाएंगे, जो चैलेंज वाले उस पोडियम पे आ जाएंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डिजिटल वेलबींग वाले।
ओम शांति।
ओम शांति।
गुड इवनिंग
अध्यक्ष महोदय,
सभी जजेस, पैनल। सो मैं आशीष और मेरी साथी दिव्या आपके सामने सोसाइटल वेलबींग के बारे में बात करना चाहेंगे। सो सोसाइटी बनती किससे है? आज हम यूथ कांग्रेस में खड़े हैं, सबसे बड़ा तबका हमारा यूथ है आज के टाइम में।
तो भविष्य निर्माता है वो यूथ है, लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है कि यूथ जो है जब कभी भी कोई पैदा होता है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन लड़के से पहले ही आशा कर ली जाती है कि आप वंश बढ़ाओगे आगे, आप माँ बाप की जिम्मेदारी देखोगे, आप उनका भरण पोषण करोगे, और लड़कियों से पहले ही उन पर डाल दी जाती है जिम्मेदारी कि आपकी शादी होगी एक दिन तो आपको घर काम, घर काज के काम, झाड़ू पोछा, आपका दहेज इकट्ठा करना है। तो अगर पहले ही उन पर सब जिम्मेदारी डाल दी गई तो कैसे बनाएंगे, भाग्य विधाता कौन है फिर इस देश का?
इस ओम शांति, गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक अरुण भाई जी एंड ऑल द ज्यूरी मेंबर्स हु आर हियर, जो कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। जैसे कि हमारे भाई ने अभी बोला कि प्लीज एन रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन?
मैंने पूछा भाग्य विधाता कौन है।
भाग्य विधाता एक्चुअली हम खुद ही हैं, हम अपने हाथ से अपनी डेस्टिनी को लिख सकते हैं। इट इज प्रूवन दैट इफ अवर यूथ, हमारे हम इतना सपोर्ट करते हैं, अगर हमारे यूथ में इतना पावर होता है, इवन यूथ भी नहीं, हम सब में इतना पावर होता है कि हम भाग्य विधाता बन सकते हैं। अगर हमें जुनून है, अगर हमें एक डेडिकेशन है, अगर हम खुद से इतने ज्यादा सक्षम हैं कि हम सारी सोसाइटी को टैकल कर सकते हैं, प्रेम शांति से अपने रिलेशंस मेंटेन, रिलेशन एक ही टाइप का नहीं होता, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिलेशन। इफ आई हैव माय मदर देन आई हैव अ रिलेशन विद माय मदर।
इस पे मैं बात करना चाहूंगा कि आपको जितने संसाधन मिलते हैं, तो मैं लड़कियों का एग्जांपल लेता हूं, अगर आप उनसे पहले ही कह देंगे कि आपका शादी होनी है, आपका दहेज इकट्ठा हो रहा है, आपके लिए हम पढ़ाई के संसाधन नहीं दे सकते हैं, आपको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए आगे आपको जाके वहीं जाना है, तो आपने पहले ही अगर गोल किसी का सेट कर दिया है तो उसके आगे वो कैसे बढ़ेगा या उसके आगे कैसे सोच सकता है इस देश के लिए, वो महिला कैसे सोचेगी?
ओके, आपका पॉइंट ये है कि उनको पहले से ही शेप में कर देते हैं कि वो बाहर कैसे निकले, राइट?
बिल्कुल।
लुक, ऐसा होता है, चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, देयर इज नो वन जिसके साथ चैलेंजेस नहीं आते, और जो चैलेंज को ओवरकम कर ले वही तो ग्रेट है।
अगर जब जब हमें सोसाइटी में ऐसा लगा कि ये चीज गलत थी, लोगों ने माना कि ये चीज गलत थी, आप सही कह रहे हो, तब आगे इतनी सारी वुमेन, इतनी सारी लड़कियां खड़ी होके आई और उन लोग ने ये चीजें तोड़ी भी। रानी लक्ष्मीबाई का एग्जांपल तो सब जानते ही हैं। कितना मतलब कितना उनने शादी करने के बाद भी उनने जाके लड़ाई की, जबकि कोई लड़ाई नहीं करता था उस टाइम पे, और फिर भी वो लड़ी।
गुंजन सक्सेना जो कि आप लोगों ने मूवी देखी होगी, वो भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वुमेन्स के लिए। तो हम ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं क्योंकि हमको नहीं पता। प्लीज कैन आई कंप्लीट?
तो अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ ही देखें, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, और जिसमें अभी रिसेंट एग्जाम्पल नहीं है कोई, और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे गांवों में राजस्थान जिले में जहां हैं अभी, वहां पे ऐसा कहीं नहीं देखने के लिए मिलता कि, क्योंकि बहुत छोटे कस्बे से लोग होते हैं, उनकी वहीं तक सोच सीमित होती है, उनको वहां से बाहर निकालने के लिए या उनको सशक्त करने के लिए
जी,
वो कैसे किया जाए? क्योंकि
इतने सारे एनजीओज हैं जो अभी ये चीजें जानते हैं और वो लोग इनकी इसके प्रति काम भी कर रहे हैं। सब जो जो महिलाएं एक्चुअली काम करना जाना, लाइक उनके लिए आंगनवाड़ियां होती हैं, वो जाके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके पढ़ाती हैं।
सो एनजीओज, माफ करेगा, एनजीओज बहुत सालों से काम कर रहे हैं हमारे देश में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जागरूकता भी फैलाई गई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे कितनी महिलाओं का भला हुआ? आज के टाइम में नॉर्दर्न बेल्ट है हमारी भारत की, यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, राजस्थान है, यहाँ पे कितने लड़कियां हैं जो आज के टाइम पे, कितने परिवार है जो दहेज नहीं लेते, दहेज प्रथा हुई। और अगर लड़कियों की मैं बात करूं, उनकी एजुकेशन है तो वो हायर एजुकेशन तक परस्यू नहीं करती हैं, वो 12वीं कक्षा तक से भी पढ़ेंगी क्योंकि वहां पे आपको फ्री फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन कितनी लड़कियां हायर एजुकेशन जाती हैं?
आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन लास्ट में चॉइस तो हमारे पास ही होती है ना, हमारे पास ही।
जैसे कि आपने एनजीओ की बात करी, आज हम जिस इंस्टीट्यूट में खड़े हैं वो बहुत बड़ा एनजीओ है।
हाँ बिल्कुल,
कई फैमिलीज अलाउ नहीं करती हैं कि उनकी जो मतलब बेटियां हैं या वाइफ्स हैं वो स्पिरिचुअल हो, वो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करे।
जी माफ करिए,
मेरी फैमिली में मैं इंडिविजुअल हूँ जो मैं यहाँ तक आई हूँ, बट द थिंग इज कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट 99% जो है नहीं अलाउ करते क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं पता नहीं वो क्या बन जाएंगी।
बट आपके आपके जैसे एक्सेप्शंस की वजह से ही तो बाकी सब 99 इंस्पायर होते हैं ना।
99% तो अभी भी है ना, तो उसका सॉल्यूशन
आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. एनजीओ सिर्फ केवल एनजीओ पूरा पार्ट प्ले नहीं कर सकता, हम खुद भी हैं. अगर हम खुद इनिशिएटिव लेके, अगर हम खुद ये इंश्योर करें कि जो हमारे पास भाई बहन है, हमारी बहनें हैं हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे समाज में, अगर हर इंसान अगर खुद से अगर करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा भी है स्वाभिधान से संविधान, अगर खुद
हम
में
ही तो बना है ये सब कुछ,
वही अगर खुद एक यूथ हर एक अगर अपनी मेंटेलिटी चेंज करेगा तो श्योरली जैसा आप बोल रहे हैं ना सारे बैरिगेट बंद हो जाएंगे, वुमेन विल राइज. और जो अभी जेंडर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी है इंडिया में, मेल्स का रेशियो ज्यादा है, बट वन डे विल कम जिस दिन ऐसा होगा कि सब लोग अपना इनिशिएटिव आसपास को देखे खुद सुधारेंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया अपने आप बदलेगी, हमको खुद को एक स्टेप आगे बढ़ानी पड़ेगी
अंटिल
एंड अनलेस.
और हमारी शिवानी दीदी भी तो कहती है हमारे संकल्प से सिद्धि होती है, तो हम लोग जैसा थॉट क्रिएट करेंगे हमारी वाइब्रेशन वैसी होंगी.
आज देश को
दुनिया
साल हो गए आजाद हुए
जी, प्लीज
मैं आज देश को 70 साल हुए आजाद हुए. मैं खुद जयपुर जिले का हूँ और बगल से मैंने जयपुर में रहता हूँ और मेरे पास मैंने बहुत लोगों को देखा है
जी,
कितने समय से एनजीओ चल रहे हैं
जी. बट मैंने हाईलाइट एनजीओ को नहीं करा केवल, मैं बोला एनजीओ का एक पार्ट प्ले करता है,
बट शिक्षा भी आ गई है, गांव में शिक्षा भी पहुंची है
जी. प्लीज कैन आई टॉक. एनजीओ केवल मैंने हाईलाइट क्या करा, एनजीओ के साथ भी अगर सेल्फ पर्सन करेगा तो आई एम डेफिनेटली आई गिव यू माई वर्ड द वर्ल्ड विल राइज.
आज तक ये बातें तो काफी सालों से चलती आ रही हैं, लेकिन आज
जयपुर जिले अगर हम अपनी
पढ़े लिखे हों के बीच में तो उसमें कहाँ कमी हो सकती है
जब तक,
और आपकी कंडीशनिंग अगर ऐसी है कि आप अगर पहले से बच्चों को तैयार कर रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे हो, बच्चे आज के लड़के जाते हैं उनको कहते हैं आप परिवार संभालना है, आपको आपको शादी करनी आगे जाकर, तो उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाती है.
पॉइंट बोला आपने, इंडिपेंडेंस का पॉइंट बोला, जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब तो वुमेन इतने थे ही नहीं सर, और तो अब इतनी सारी एजुकेटेड वुमेन इधर खड़ी है.
बट अभी इंडिपेंडेंस है बट फिर भी वो माइंडसेट क्यों है,
और वो हम भी दिल्ली और हरियाणा जैसे लोग हैं
जा रहा है,
हम लोग
हम हमारे लोगों की वजह से जा रहा है वो माइंडसेट अब.
बट वो वुमेन की बात नहीं हो रही है.
प्लीज प्लीज एक बोलिए तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा वो रहेगा, प्लीज कंटिन्यू.
यहाँ पे विमेन की बात नहीं हो रही है सिर्फ, okay. यहाँ पे सोशल वेलबींग की बात हो रही है.
एक्चुअली सर ने जब मेन पॉइंट लाइन हाईलाइट किया दैट वाज वुमेन अपलिफ्टमेंट, ओके, एंड फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट आल्सो देयर आर मेनी वेज. अगर आप द टॉपिक इज एक्सक्यूज मी प्लीज लेट मी कंप्लीट, द टॉपिक इज दैट सेल्फ बींग फ्रॉम लाइक सेल्फ बींग लीडिंग टू सोशल वेलबींग. अगर सेल्फ बींग को हम इंकल्केट करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा, यूनिटी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ऑनेस्टी बढ़ेगी, ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, पीस बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, तो इससे हम ये सारी चीजें इरेडिकेट कर सकते हैं.
बहुत मानता हूं बात को, लेकिन आज के समय में जो लड़का या लड़की जो एक गांव के परिसर में बैठा है या जयपुर शहर में बैठा है
जी,
वो अपने परिवार की सोसाइटी में बैठा है
जी,
वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं तो वो उसको क्यों नहीं,
मेरा आपसे एक क्वेश्चन है,
तो वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाता.
किससे मतलब सोसाइटी किससे बनी है ये बताओ आप.
खुद से बनती है ना राइट,
सोसाइटी हमसे बनती है, लेकिन अगर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तो उसको कैसे अचीव करेगा.
चेंज करना है तो पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा.
आप
दैट्स राइट,
सही बात है.
एक मिनट एनजीओ बाद में आया, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का एग्जांपल दिया, उस समय को एनजीओ वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम था नहीं, उन्होंने सेल्फ बींग को अपने आप को खुद एक स्टेप लिया.
लेकिन सोसाइटी आपको कितना अपलिफ्ट करने में मदद करती है, आपको कितना सहयोग देती है, आपको उनके विपरीत जाना पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए.
मेरा कहने का सॉरी टू इंटरप्ट, टाइम होने वाला है लाइफ में, मेरे को एक लास्ट में एक पॉइंट इंकल्केट करना है मेरे को. अगर आप सेल्फ वेलबींग पे फोकस करोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वाध्यन, अगर हम स्वाध्यन प्रॉपरली करेंगे, हम अपने आप को जानेंगे कि हम कैसे हैं, तो हम श्योरली सब कुछ चेंज कर सकते हैं.
सोसाइटल वेलबींग है और इसमें अपलिफ्टमेंट सोसाइटी, आपका परिवार, आपका समाज, समाज से आपका अपलिफ्टमेंट हो सकता है.
गलत नहीं बोल रहे हो, हम आपकी बात कंप्लीटली मानते हैं, लेकिन जो सोसाइटी का वेलबींग है वो पहले खुद की खुद को.
अगर मैं आज खुद की परिवर्तन कर लेता हूँ तो और मेरे माँ बाप मुझे नहीं जाने देते या किसी लड़की को नहीं जाने देते गांव से बाहर.
आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं पहले से, अगर आप कोशिश करेंगे मेरी कदम ही नहीं बढ़ा.
मेरे नेगेटिव और पॉजिटिव से फैक्ट नहीं बदलेगा आपका. मेरे नेगेटिव या पॉजिटिव से आज कुछ भी बलात्कार हो रहे हैं या लोगों की जल्दी शादी हो रही है, बाल विवाह हो रहे हैं, उससे वो मेरे कहने से नहीं बदलेगा, वो सच्चाई है.
लिसन, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएंगी सोसाइटी में आज भी है.
आप कहने माँ बाप के विरुद्ध जाकर,
प्लीज सुनिए,
आप कहने माँ बाप के विरुद्ध जाके हम काम करें सोसाइटी के विरुद्ध.
मैं सॉरी, व्हाट यू सेड,
ये प्रॉब्लम कैसे फेस करें, सो व्हाट इज
सेल्फ इंटरेस्ट
सोसाइटी के विरुद्ध या पेरेंट्स के विरुद्ध जाके हम प्रॉब्लम फेस करें वाली, मैं आपसे पूछ रहा
हूं. प्लीज, बेल हैज रंग, सो आई थिंक आई एम कंक्लूडिंग इन माय लास्ट टू वर्ड्स. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की from which we can change the world and we can change the society.
We can change the society by changing ourselves first. Mahatma Gandhi bhi to bol ke gaya hai, duniya ko change mat karo pehle, khud ko badlo. Thank you.
Thank you.
Thank you everyone.
Thank you.
थैंक यू, बहुत सुंदर. एक बार तालियां वह फिर से हो जाए. और अभी अंतिम ग्रुप डिजिटल वेलबींग. डिजिटल वेलबींग वाले जो फेवर कर रहे इस पोडियम पे, चैलेंज कर रहे अपोजिट पोडियम पे, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे. क्विक. जल्दी क्विक आइएगी. ऊपर आ स्पोक्स पर्सन.
नमस्कार. नमस्कार, मैं रश्मि मक्कर आज के इस स्पिरिचुअल पार्लियामेंट में अपनी टीम रे ऑफ होप भारत की ओर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपने विचार विमर्श कर सकती हूँ? मेरा आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ऑन आवर लाइफ. आज हम देख रहे हैं हमारे रिलेशनशिप में कितनी, हमारा रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लॉस होता जा रहा है. हमारे बच्चों का आईक्यू, ईक्यू, इंटीग्रिटी लेवल कम होता जा रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी इश्यूज, ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रही है. वी आर नॉट ऑथेंटिक ऑन आवर डिजिटल वर्ल्ड. एंड हेल्थ इश्यूज, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारे हेल्थ इश्यूज पर पड़ा है. हमारा जो यूथ है वो डिप्रेशन की ओर जाता जा रहा है.
हम पीस मास्टर्स थे. आर टैगलाइन इज ब्रिंगिंग वर्ल्ड एट पीस. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जूरी और हमारे चीफ गेस्ट, हम अपना टॉपिक वेलबींग, डिजिटली वेलबींग पे प्रस्तुत करना चाहते हैं आपकी अनुमति से. हाँ,
पहला आपका जो क्वेश्चन था कि हम लोगों ने पर्सनल कनेक्शन लॉस किया हुआ है, राइट?
एक मिनट,
वी हैव नो क्वेश्चन टू यू.
पहला पॉइंट आपका यह था कि डिजिटली होने से आपका जो पर्सनल कनेक्शन है वो लॉस हुआ है. तो मैं इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देना चाहूंगा. हम सबको लॉकडाउन तो याद होगा, राइट? हम सबको लॉकडाउन तो याद होगा. लॉकडाउन में क्या हुआ था, सभी लोग अपने घर की दीवारों में सीमित होकर रह गए थे. बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर किसी देश में थे वो अपने परिवार से किस तरह से कनेक्ट हुए, मैं आपसे जानना चाहूंगा.
देखिए मेरे मित्र, की पैंडेमिक जो है, प्राकृतिक आपदा, वो हर समय नहीं होती. प्राकृतिक आपदा को आपको डिजिटल वेलबींग नहीं मान सकते ना. डिजिटल वेलबींग इज 24/7 एंड ऑल इट इज डिजिटल जो है ये, इसने हमारे लाइफ में ओनली एंड ओनली जो है एक मैस क्रिएट किया है इन एवरी मैनर. यू कैन रियलाइज पर्सनली ऑल्सो, है ना, कि भाई आप सभी हमारे फ्रेंड्स भी जानते ही हैं कि जो हमारा डिजिटल है ये प्लेटफॉर्म, इससे हमारी संवेदनाएं खत्म हो रही हैं. आज बच्चों की इमेजिनेशन पावर बिल्कुल जीरो हो गई है. बच्चे जो है बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं. वो ना बिल्कुल, आप उनको पूरा स्कूल में 6 आवर्स के लिए कुछ भी पढ़ाइए.
बच्चों को मोबाइल देता कौन है?
बच्चों को मोबाइल लेके एक दो दो बच्चे आज घर में
है कि वो रो रहा है, चलो चुप हो जाए भाई, दे दो इनको मोबाइल.
इसीलिए तो दिया, लेकिन बड़ों को किसने दिया?
आपने
बड़ों को तो इमोशनल,
वो घर से ही सीख रहे हैं ना बहन जी,
वो घर से ही सीख रहे हैं. दिया गया ताकि वो अपस्किल हो सके, वो अपस्किल हो सके, वो अपडेटेड रह सके.
15 मिनट
बच्चों को यूज करना पड़ता है. इनफैक्ट बहस में सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव रहने के लिए हमें डिजिटल मैच्योर रहना जरूरी है. बिकॉज कॉम्पिटिशन है हमारा, वो क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या आ रहा है टेक्नोलॉजी, वी डोंट नो.
डिजिटली अपडेटेड होना इज वेरी इम्पोर्टेंट. अपस्किल होना, आपने कहा था कि जॉब नहीं है, ठीक है, करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू, जॉब बिल्कुल भी नहीं है. क्यों? क्योंकि कंपनी कह रही है कि उनके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है. अब जो बच्चों के पेरेंट्स ने अपनी सारी कमाई उनके कॉलेज पे लगा दी कि चलो पढ़ लिख के बाहर निकल के आएगा, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, तो ऐसे वो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं. इनफैक्ट जहाँ पे जो भी जॉब करते हैं,
योर पॉइंट, बट द पॉइंट इज वर्ड, अगर हम उसको सही मैनर में यूज कर रहे हैं, वी हैव टू यूज इट, बिकॉज वो बना है तो हमें यूज करना भी है. लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर हम उसको ज्यादा पूरा दिन ही, हम पूरा रात भर दो दो बजे तक अननेसेसरी उसको यूज कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट आवर हेल्थ.
तो वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना यूज कर रहा है. हम तो वेल बीइंग के बारे में बताएंगे कि हाँ ये तो अच्छी चीज है.
कैसी अच्छी चीज?
वो तो इंसान के ऊपर है कि वो कितना यूज कर रहा है.
आपने अभी तक एक भी पॉइंट नहीं बताया जिससे कि वो अच्छा फील हो. कंपटीशन है बिजनेस में.
अपस्किलिंग
पॉइंट है. अपस्किल कैसे मिल रहा है डिजिटल से?
मैं बता रहा हूँ,
एआई है वो तो.
क्यों सॉफ्टवेयर जो आजकल लोग सीखते हैं, जावा होता है, ई मार्केटिंग होता है, डिजिटल मार्केटिंग भी होता है, इसके क्लासेस इंस्टेंट ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड
अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. 150 करोड़,
तो
हाउ वी कैन सर्वाइव.
हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेटर्स रोबोट से रिप्लेस किए गए हैं. अब उस टाइम पे जो मैन पावर थी वो तो अनएम्प्लॉयड हो गई ना. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर
डूइंग, बट उसका एक दूसरा भी पहलू है. पहले जहां लोगों को
ह्यूमन को मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं,
पहले जहां लोगों को ऑडिशन देने में प्रॉब्लम होती थी, आज बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल हैं.
ओनली 150,000 यूट्यूबर इन इंडिया आउट ऑफ 150 करोड़,
बट
इट इज ए रेलेवेंट
ओनली है. बाकी सब लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो उसी से भी
आपको जाके पता करना होगा.
उससे भी आपको
वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट यूट्यूबर्स, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, वी आर टॉकिंग
अबाउट
But the people who are below poverty line and they are not well educated, how will they use it?
आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ. अभी जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है डिजिटल इंडिया का, राइट, उसमें क्या होता है, पहले जो पैसा जाता था वो एक ब्रोकर के थ्रू जाता था, उसमें करप्शन होता था 90%. आज क्या हो रहा है, वो पैसा डायरेक्टली जा रहा है यूजर्स के पास. तो करप्शन,
वाई वी नीड इसको ऑनलाइन की नीड क्या है? हम कैश में अच्छा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं.
कैश में, ऑफलाइन में,
कैश में तो ब्लैक मनी भी होता है.
सबको काम मिल रहा था.
मोदी जी ने पहले डिजिटल इंडिया करा, अब डिजिटल डिटॉक्स चल रहा है.
नो नो नो, जो ऑफलाइन का तरीका बता रहे हो आप,
डिजिटल डिटॉक्स भी काम हो रहा है सारा.
अब सारा डिजिटल,
आप ऑफलाइन तरीका बता रहे हो.
आज बच्चे जो है, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो बच्चे हैं, जो आगे का हिस्सा डेवलप नहीं हो रहा, वो ज्यादा मोबाइल देखने की.
राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि
मोबाइल को देखने से वो पहले ही एज से पहले रिलेशनशिप में जाने की बात करते हैं.
और क्या,
25 ईयर्स.
आप पहले अपने पॉइंट पे, इससे मैं आपका जवाब दे रहा हूं.
वो मोबाइल में ही शेयर करते हैं, हर चीज गूगल पे सर्च कर रहे हैं. सोसाइटी इज इक्वल टू सोल्यूशन होता था पहले. सोसाइटी इज इक्वल टू सोल्यूशन होता था पहले, अब वो सारा सोल्यूशन गूगल पे ढूंढ रहे हैं.
बट आपको उसका दूसरा तरीका भी है. दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में यहाँ का बंदा अमेरिका से कनेक्टेड है, उनको वहाँ के कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन है. आज आप बताइए,
तो
आप यहाँ पर
तो खत्म हो रही है सर. पहले चिट्ठी लिखते थे हम,
नहीं
मोबाइल से पहले अमेरिका में नहीं रहते थे हम.
पहले चिट्ठी
जब तक आपकी चिट्ठी मिलेगी,
चिट्ठी लिखने में
आप एक वर्ड में, एक एक वर्ड में हमारी भावनाएं प्रकट होती है.
आप
एक वर्ड से, एक शब्द से हमारी अभिव्यक्ति जो है वो
डेवलप लिखते हो. उस चिट्ठी को पहुंचने में 2 महीने लगते हैं, लेकिन उस छुट्टी में आपके इमोशंस नहीं दिखते. लेकिन
आप, देती हो तुम.
लेकिन अगर आप वीडियो कॉल में बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाले का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसी है. क्या वो बात छुट्टी में पता चल पाएगी?
सर वो बात ही नहीं करना चाहते वीडियो कॉल पे.
क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते?
आप खुद देखिए,
सब करना चाहते हैं.
सब
रात में, रात को याद आती है जब यहाँ सुबह हो रही होती है, जब यहाँ सुबह हो रही होती है वहाँ रात हो रही होती है।
नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 बजे दोपहर में 12 बजे उनकी रात होती है, आप बात कर सकते हैं।
आप इंडिया में जितने बीपीओ काम कर रहे हैं वो नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट तो वो लोग कर रहे हैं ना। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ कनेक्ट करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा।
हम लोग मेरिट्स डिमेरिट्स पे बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेरिट्स नहीं है, हम लोग भी यूज कर रहे हैं।
आई जस्ट वॉन्ट
मेरिट्स तो है बट डिमेरिट्स बहुत ज्यादा है, भर भर के
आपके ऊपर है कि आप किस ओर ध्यान दे रहे हो। ये आपके ऊपर है कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपके पास ये नहीं पता अपने मन को कंट्रोल कैसे करना है, अगर आप आध्यात्मिकता से नहीं जुड़े हुए हैं
तो आप कैसे।
और एक तरीका और है, सोशल नेटवर्किंग एल्गोरिदम पे काम करती है, पता है सबको। अब आपको पता करना है कि एल्गोरिदम आपको यूज कर रही है या एल्गोरिदम को आप यूज कर रहे हो।
एक्चुअली सर,
जनरली क्या हो रहा है, आप जो डिस्कशन कर रहे हो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको नहीं पता कि एल्गोरिदम काम कैसे करती है।
पार्डन सर,
एल्गोरिदम आपको काम यूज कर रही है।
अलेक्सा, ही और सी इज लिसनिंग एवरीथिंग।
नो, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ,
इट्स लिसनिंग एवरीथिंग। एंड
ये गूगल का डेटा है
और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमें उसी तरह की एड दिखानी शुरू कर देती है जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं।
तो यही है, आप बीके शिवानी दीदी की वीडियोज बोलिए ना, आपके हिस्ट्री में वही आएगी।
पार्डन,
यूज एल्गोरिदम विद
इंटेलिजेंस। एट द एंड डिजिटल वेलबीइंग इज नेसेसरी बट डिजिटल अवेयरनेस इज अ मस्ट।
यस, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू।
ओम शांति। तो बहुत अच्छा ये डिस्कशन, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। लेकिन आपने जो हमें कोट किया, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि मोबाइल देखना बंद कर दो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होगा। देखो, अगर हम मोबाइल देखना अपना यूज करना बंद कर देंगे ना तो मरीजों का इलाज रुक जाएगा। तो ये तो आजकल की नेसेसिटी है, मोबाइल्स गैजेट्स आजकल की नेसेसिटी है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। हाँ, लेकिन जो दूसरी पार्टी ने कहा कि कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है वो जानना बहुत जरूरी है। और वही चीज जब हम अपने कोर से कनेक्ट होते हैं, अभी बात हो रही थी यहां पर स्पिरिचुअल वेलबींग की, वो क्या है, वो अपने कोर से कनेक्ट होना है। जैसे अभी बताया कि आप वो वीडियोस देखिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही वीडियोस खोलेगा, तो वो इंटेलिजेंस कहां से आएगी, वो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आईक्यू, इस सब का जो बेसिस है वो है ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये भी एक नया टर्म है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब अपने आप को जानना, कहां पर क्या सही है, कैसे चलना। जैसे रोड पर गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती है ना, गाड़ी चलाने में उसी को मजा आता है जिसको चलानी आती हो। ऐसे ही जीवन एक यात्रा है, इट्स अ जर्नी। अगर आपको चलाना नहीं आएगा ना इस गाड़ी को, तो आप एक्सीडेंट्स करते रहेंगे और डिबेट्स करते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच, ग्रुप को भी और डॉक्टर साहब को भी।
बहुत अच्छी चर्चा हुई है, जैसे लास्ट में बात चल रही थी, दोनों ही जरूरी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जैसे एक ट्रेन होती है दो पहियों और दो ट्रैक पर चलती है, एक ट्रैक पर नहीं चल सकती है। जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें दोनों ट्रैक की बराबर की जरूरत होती है। और इस चर्चा के बाद हमारे पास थोड़ा समय है, हम इसको जीरो आवर्स के रूप में यूज करना चाहेंगे। मैं जीतू भाई जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको यूज करेंगे कैसे, किसी के मन में कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है एनी रिगार्डिंग लाइफ, एनी कंसर्न अबाउट यू यू कैरीज को, दे कैन आस्क और दे कैन राइट डाउन, उन्होंने हमें भेज सकते हैं लिखकर।
अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो हाथ रेज कर सकते, जो हमारे स्पीकर महोदय है, गेस्ट है और कीनोट स्पीकर है, तीनों से। हाँ जी, आइए, माइक दीजिए इनको। सोशल वेलबींग, रामकृष्ण भाई जी।
ओम शांति। ओम शांति। देखिए हम सब सोशल बीइंग्स हैं, समाज में कुछ हो रहा है और हम अपने अंदर बहुत अच्छे हैं, मगर समाज में कुछ हो रहा है, हमारे अंदर कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे आसपास का एक छोटा सा दुनिया है चार पांच लोगों का, और सोचा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा मोहल्ला है और हमारा सोसाइटी है, हमारा कंट्री है, हमारा ग्लोब है। कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर जरूर पड़ता है, सोचने में या कुछ हर चीज में। सो एज ए सोसाइटी एक ओवरऑल वेलबीइंग की बहुत जरूरत है, तो उसका इम्पैक्ट इतना भी ना पड़े कि हमारा पर्सनल वेलबीइंग भी डिस्ट्रॉय हो जाए, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, या इतना भी ना पड़े कि हम बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाए, किसी प्रकार की सेंसिटिविटी ना हो। इन दोनों के बीच में हमारा एक मिडिल पाथ को सर्च करना है, और उसके साथ साथ हमारे लाइफ के द्वारा उस सेंसिटिविटी को, अवेयरनेस को या सोशल वेलबीइंग को किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है, या हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस विषय पे सोचते हुए आगे बढ़ने से हम अपना सेल्फ का भी वेलबीइंग को और सोशल वेलबीइंग को भी बैलेंस कर पाएंगे। एनीवन मोर?
ओम शांति। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से है, कैन यू प्लीज डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेंटल एंड इमोशनल एंड टुवर्ड्स द मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग?
मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग दोनों में फर्क क्या है? जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजें हम पढ़ते हैं, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। ओके, फॉर एग्जांपल जब थॉट, थिंकिंग पैटर्न, मेरा सोचने का नजरिया कैसा है, मैं किसी चीज के बारे में कैसा सोचता हूं, वो मेरा थॉट प्रोसेस बनाता है। इमोशंस की जब बात आती है, मैं फील कैसा करता हूं, मैं फील कैसा करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, थॉट प्रोसेस है कि हाँ बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, थॉट ठीक है। लेकिन इमोशंस हो सकता है मैं बाहर की बारिश से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया हूं, मेरे इमोशंस अच्छे नहीं हैं, या बारिश को देख के कई लोगों को लव रोमांस की भी याद आती है, वो भी एक इमोशंस है। फिर आता है बिहेवियर, हम बिहेव कैसा कर रहे हैं। हो सकता है मेरा थॉट ठीक है, मेरे इमोशंस भी ठीक है, लेकिन मेरा बिहेवियर ऑड है। जब तीनों को हम देखते हैं तो वो पूरा मेंटल हेल्थ में आता है, इमोशंस एक उसका हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल शिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है, शिजोफ्रेनिया में थिंकिंग पैटर्न प्रॉब्लम है, उसमें इंसान को लगता है कि कोई उसको मारना चाहता है, कोई उसकी बातें सुन रहा है। अब जब उसको ऐसा लगता है कि उसको मारना चाहता है, कोई सुन रहा है, तो उसको क्या लगता है, उसको डर लगेगा। तो इमोशंस उसके ठीक हैं, बिहेवियर कैसा करेगा वो वहां से हट जाएगा या दरवाजा बंद कर लेगा या शोर मचाएगा, बिहेवियर भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, थॉट्स में प्रॉब्लम है। इमोशंस आर एप्रोप्रिएट टू दी एबनॉर्मल थॉट्स, ठीक है, लेकिन थॉट्स की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो आजकल युवाओं में हम देखते भी हैं, बढ़ रही है, एक ही चीज को बार बार ही करना। मैंने हाथ ठीक से धोए, मेरे हाथ साफ है या नहीं है, मैंने लॉक किया नहीं किया, बार बार चेक करेंगे एक ही चीज को, जिसको हम कहते हैं चेकर्स। तो वो बिहेवियर की प्रॉब्लम है, उनका एप्रोप्रिएट है कि हाँ मैंने अगर दरवाजा बंद नहीं किया है तो मुझे चेक करना चाहिए। इमोशंस भी ओके है, इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बिहेवियर में प्रॉब्लम है, तो वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इमोशंस की प्रॉब्लम जिसमें डिप्रेशन आता है, थिंकिंग पैटर्न, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, मान लो हमारे साथ कोई एक नुकसान हुआ, मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ या मेरे रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम हुआ, मेरे इमोशंस ये हो सकता है कि थोड़ी देर मुझे दुख हुआ, उसके बाद मैंने अपने आप को कवर अप कर लिया। लेकिन एक्सेसिव एबनॉर्मल इमोशंस क्या है, मैं डिप्रेशन में चला गया, मेजर डिप्रेशन में चला गया। आजकल होता है ना, एक बीमारी जो आजकल फैल रही है जिसको हम कहते हैं फीलिंग फ्लू, कॉमन फ्लू होता है ना, स्वाइन फ्लू होता है, ऐसे ही आजकल जो दिखाई नहीं देती वो बीमारी कौन सी है, फीलिंग फ्लू, फीलिंग की बीमारी। उसने मुझे कुछ कह दिया, मुझे फीलिंग हो गया, मुझे फील हो गया बहुत ज्यादा। ये बीमारी सब में है, ये फीलिंग फ्लू है, ये इमोशनल प्रॉब्लम है। तो जिनका इमोशनल क्वेश्चन कम होता है उनको ये इमोशंस हावी हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर सबका मिला के ये सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेकिन इमोशंस उसका एक एस्पेक्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ का, जिसमें हमारे इमोशंस या तो कहीं ज्यादा हो जाते हैं या बिल्कुल हम नंब हो जाते हैं। तो एप्रोप्रिएट इमोशंस ना होने से इमोशनल क्वेश्चन कम हो जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ में उसकी अगर सोच खराब है या उसके इमोशंस खराब है या उसका बिहेवियर खराब है, वो तीनों चीजें आ जाती हैं। ओके,
गुड इवनिंग एवरीवन। सर मेरा क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन के अराउंड है। मैं अपना रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ, लेके बताता हूँ। जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट होती है तो मैंने भी प्रिपरेशन करी। उस टाइम मेन गोल था कि बस जॉब लग जाए, 40,000 की लगे या 50,000 की लगे, जॉब लग गई। फोर्थ ईयर में एंटर होती लग गई, पर मैंने देखा कि जो मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो ज्यादा का पैकेज ले रहे हैं, उसकी किसी की 1,00,000 तक जा रही है। मैंने उसकी तैयारी करी, वो भी लग गई मेरी। अभी मैं 1 साल हो गया जॉब करते हुए, जॉब में इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा है, मेरा इंक्रीमेंट भी 6 महीने के अंदर हुआ है, मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन है, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूं। अभी मैं सोचता हूं कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर लूं, उसमें लगाऊं, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि मैं, मेरे एम बार बार चेंज हो रहे हैं, वो एम मिल गया लेकिन मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूं, तो उसे कैसे ओवरकम करूं?
ओके, जहां तक मैं समझा हूं उस आधार पर, क्योंकि वॉइस थोड़ा डिस्टर्बेंस था, क्लियरली समझ नहीं पाया। देखिए, आपका सेटिस्फेक्शन आपकी अवेयरनेस के साथ चेंज होता रहेगा। आपका एक्सपोजर जितना मिलता है, फर्स्ट इनिशियली आपने जो ग्रेजुएशन का टाइम पर आपका थोड़ा सा एक्सपोजर था, वो एक्सपोजर से जो आपने अचीव किया उसमें थोड़ा सेटिस्फाइड हो, मगर जैसे ही आपने और आगे बढ़ा तो नया एक्सपोजर मिला, नया अंडरस्टैंडिंग मिली, और जैसा ही आपका अंडरस्टैंडिंग और आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है और उस एक्सपोजर के साथ आपके जो इननेट क्वालिटीज है या आपकी कैपेसिटी के साथ आप कंपेयर करते हो, आपको समझ में आ रहा है कि इसको भी मैं अचीव कर सकता हूं, एक कैपेसिटी और एक्सपोजर दोनों भी मैच हो रहे हैं, तो आपको नया एक्सप्लोर करने का इच्छा पैदा हो रहा है। ठीक है,
ये नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर है, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर,
एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ओके, हाँ, प्रॉब्लम कहां आएगा कि आप जो अचीव करते हो उस पर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो या उसकी, इसको जॉय नहीं मिल रहा है, आपको एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है। ओके, कंटिन्यूअस वो एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है, तो शायद आपको इनर वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, आपको एक्सपोजर मिल रहा है तो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप इसी तरह से आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, क्योंकि आपको सारा एक्सपोजर इनिशियल डेज में ही मिले ये शायद संभव नहीं है। ओके, हाँ, मगर वो एम्प्टीनेस ना हो, वो एक मतलब मिसिंग, ऑलवेज फीलिंग दैट देयर इज समथिंग इज मिसिंग इनसाइड मी, वो फीलिंग नहीं होना चाहिए. आज के दिन पे जितना आपने एक्सप्लोर किया उसका बहुत सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए.
थैंक यू सर,
बहुत 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 शुक्रिया आपका.
हेलो,
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी और हमारे महानुभाव गेस्ट का भी. अभी हम सभी सभा के तरफ से हमारे अध्यक्ष महोदय को अनुरोध करते हैं कि आप सभा को संबोधित कीजिए, इस सदन को संबोधित कीजिए. अध्यक्ष महोदय.
ओम शांति. आज का विषय हमारा था यू टूवर्ड्स ओइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग. उसके अंतर्गत ही सारी डिस्कशन हुई है और बहुत ही सुंदर विचार हम सब ने सुने, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी. मैं अपने अनुभव के आधार पर दो चार बातें जरूर शेयर करना चाहता हूं. वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एटसेट्रा, जो भी हम चाहते हैं वेलबींग के लिए, अगर हम अपने आप से सेल्फ लव करते हैं तो हम समझते हैं कि अपना कभी कोई व्यक्ति नुकसान नहीं करता. आज सेल्फ लव ना करने के कारण ही चाहे ड्रग्स की प्रॉब्लम आ रही है, डिजिटल प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि हम अपने आप से बात नहीं करते. डेली हम कितने लोगों से पूछते हैं कैसे हो, आर यू ओके, क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है? जो पूछता है हाथ खड़ा करें जरा. तो ये एक आदत डाल लीजिए. आप दिन भर वेलबींग रहेंगे तो, दिन भर ओके रहेंगे तो, मान लीजिए आपका मूड खराब है, अपने आप से बात कीजिए, क्या बात है भाई. दूसरों को हम कंसोल करते हैं, दूसरों के लिए पूछते हैं कि भाई ठीक ठाक हो, उसको सुझाव देते हैं. अपने लिए जब शुरू करेंगे तो 100% हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. दूसरी बात, वेलबींग के लिए जहां तक मैं समझता हूं, एंजॉय योर टाइम. समय एक ऐसी धन है जिसको हम यूज करेंगे तो अपने जीवन में कभी भी हम डिस्टर्ब नहीं हो सकते. मुझे याद आता है कि अब्दुल कलाम जी का एक कोट है, उनसे किसी ने पूछा, सर क्या आप कभी पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए गए हैं? बहुत सुंदर जवाब किया है. कहते हैं कि मेरे पास अपने जीवन के 3 घंटे एक बंद कमरे के अंदर, अंधेरे कमरे के वेस्ट करने के लिए नहीं है. तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा इंसान कब बन सकता है, जब हम अपने समय की वैल्यू को रखना शुरू करेंगे. तीसरा काम जो हम कर सकते हैं अपने लिए, जो हम कर नहीं रहे, जो कर सकते हैं. परमात्मा ने हमें जीवन दिया, वो भी लिया. माता पिता धरती पर लाए, वो भी हम लिया. टीचर ने हमें कैरियर बनाया, वो भी लिया. सरकार से हम ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, दे क्या रहे हैं? अपने आप से पूछिए कि हम समाज को क्या दे रहे हैं. शायद खाली निकलेगा. अगर हम इतना भी एक काम करें, दिन के अंदर कम से कम एक अच्छा काम शुरू कर दें, वेलबींग अपने आप आ जाएगी. वेलबींग क्या है? अपना अच्छा और दूसरों का अच्छा. जब दूसरों का अच्छा करेंगे तो डबल होके हमें रिवर्स मिलती है, जैसे हैप्पीनेस के लिए कहा जाता है, स्माइलिंग फेस के लिए कहा जाता है. तो आज से मैं समझता हूं हमारे जो सभा सदन में मेंबर्स बैठे हैं, कम से कम ये संकल्प तो करें कि दिन में मुझे कम से कम एक अच्छा कार्य जरूर करना है. तो क्या होगा, जब रात को आपको सोएंगे बहुत खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी कि हम अपने जीवन को बना सकते हैं. लास्ट पॉइंट कि पर्सनैलिटी के लिए युवा हर समय एक्साइटेड रहता है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए. आप देखिएगा समाज के अंदर कितने एजुकेटेड लोग हैं, परंतु जब उनके न्यूज पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या लगता है कि ये जंगल राज है. माना क्या है, वो पर्सनैलिटी नहीं है जो हम डिवेलप कर रहे हैं. उसके लिए हमें स्पिरिचुअल बीच में लाना पड़ेगा, जिसको वैल्यूज कहते हैं. तो जैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डिवेलप करते हैं, उसके साथ अगर हम वैल्यूज को रखें, वैल्यूज क्या है, कठिन नहीं है. वैल्यूज वही है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमें हैप्पीनेस पहुंचाते हैं. तो हमें वेलबींग के लिए इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो
अपने जीवन के अंदर हम सदा ही खुश रह सकते हैं और लास्ट में एक बात जरूर जीवन के अंदर अपना मॉर्निंग और इवनिंग में एक काम शुरू कर दिए, उठते सार गॉड को थैंक्स करें, परमात्मा को थैंक्स करें। क्यों? इसलिए नहीं, इसलिए कि पिछले 24 घंटों के अंदर 3.25 लाख लोग दुनिया से चले गए, मेरा उसमें नंबर नहीं आया। इसमें तो उसका थैंक्स बनता है। कोई हमें पानी का गिलास देता है तो हम थैंक्स करते हैं, उसने हमें 24 घंटे दिए तो कम से कम उसके लिए इतना थैंक्स तो बनता है। आप ये करना शुरू कर दीजिए, वेलबींग शुरू हो जाएगी। और रात को सोने से पहले क्या करें, आप एक काम कीजिए, दिन में सोचिए कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ है। नहीं तो सोते समय क्या करते हैं, हर नेगेटिव याद आती है, गलत याद आता है, परंतु सोचिए आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, उसके लिए धन्यवाद करें परमात्मा का कि आज इतना काम अच्छा हुआ, कल उसको और होगा। तो मैं समझता हूं अपने जीवन की जो मैंने 4-5 बातें आपको शेयर की हैं, तो वेलबींग के लिए 100% हम अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने हमारे इस पार्लियामेंट सेशन को एंजॉयबल किया, बहुत डिस्कशन की, और इसको आज रात सोने से पहले खूब चर्चा करना कि हमने इसको जीवन में कहां तक अपनाना है, तभी इस पार्लियामेंट का बेनिफिट हम ले सकेंगे। थैंक यू, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और इस पार्लियामेंट सेशन के समाप्ति पर उस परमपिता का भी बहुत धन्यवाद जिसकी प्रेरणा से हम सभी इस सेशन में मिले हैं और आपस में चर्चा भी की। हमारे अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद और हमारे जो विशेष अतिथि आए हैं उन्होंने अपने पावरफुल और नॉलेजफुल शब्दों के द्वारा, अनुभव के द्वारा हम सबको भरपूर किया, इनका भी बहुत धन्यवाद। और आप सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी हम परमात्मा की याद में उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, उसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे। परमात्मा की याद।
बत्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। जग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन से हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।